very, very complicated subject, as you all know. I think everybody is aware of it. And I've been trying to think about how we can kind of simplify it, or at least do it in such a way that we can make some sense of it. It's a very complicated subject. As you all know, we've had about X hundred commissions, many, many debates, many, many subjects, but we have not reached a conclusion at all. So it's a huge mess, and I want you to, people, we've got some a very good panel. Here's our advertisement, and we put our questions there for you to see. I'm sure all of you have seen them, so I won't repeat them. Our panel is very informed. All I want is pointed discussion, sharp interventions. I will try and raise some questions to hang the discussion together, and I will direct some questions to some people, but all the panelists are free to intervene. The audience can will get into it later, but at the beginning, we let the panel intervene as they like, but we want to be very sharp with our questions. So let me just introduce my panel. We've got Mozam Janjua, that a long experience in local government. He's a mashallah, well-known local government person. So I thought it would be very important to have somebody from local government. Otherwise, normally this debate is always kept at the upper level, the secretaries, and I thought we should get somebody from there too. I would like to include more people, but then time obviously is a consideration. Then we've got Tariq Malik, who is from the PMS, the former PCS sort of association, the PMS association, who are now getting very, very vocal about their propositions. So I thought it would be a good idea to have them. Then we've got Salman Shah. Everybody knows Salman Shah, economist, former Minister of Finance, etc. Shahid Kardar, I don't know whether you can join us or not. Shahid agar aata, toh he would be heard. So Shahid Kardar, former Governor Central Bank. Now we've got Tariq Bajwa, former Secretary of Finance and Governor Central Bank, State Bank. Tariq, thank you very much for turning up. Tariq is obviously very well informed about the civil servant, has been a long-term civil servant, knows it very well. Then we've got Ilhan Niaz, young professor, very competent historian, very good historian from Qaid-e-Azam University. Author of several articles, latest book is Something to Do with Empires, but a very good book, a very bad a title, but a very good book. He's also got a book on post-colonial government. He's, mashallah, one of our bright young historians, and I learn a lot from him, so I thought we would invite him too, because he knows a lot about the history of the civil service. So folks, as I said, we've got a great panel. We want very short interventions, very, very sharp interventions. We want directed. I'll direct some questions, but don't worry about them. I want you to just kind of get us to understand this subject. It's such a complicated subject. We're all confused. So let's talk about it first. We've got a civil service that's of colonial origins. It was a magistracy and a revenue. It had nothing to do with development. It was only magistracy and revenue. It has traveled the whole road from magistracy to development. It's now become a development service. In fact, I would argue that it's Dr. Jekyll and Mr. Hyde. It doesn't know what to do with the development, revenues, or magistracy. But yet, at the same time, last week we did a seminar with Marcus, whatever, he's written a book on how Islamabad was developed. And he points out that development was taken over by the foreign consultant at the very beginning of our history. This was when Harvard Advisory Group and Ford colonized us. And therefore, the civil servant became a second fiddle to the Harvard Advisory Group. They were taken to Harvard trained, brought back, taken to Harvard trained, brought back, and they began to sing the song of the donor. So I want to ask Ilhan Niaz, have you bid goodbye to colonialism or tinkered with it? So Ilhan, please set the discussion with some history so that we can go on to the real thing. Ilhan, you have 5 minutes to try and set it into some history. Go ahead. Ilhan, floor is yours.
Right. Thank you. I'll have to disagree with some of what you have said, in the sense that the magistracy is not of colonial origin. It's actually far older. It goes back at least 2,300 years to the Archshastra state. The British took over that structure and replaced, of course, ex-Mughal officials with their own, and you know, so in that sense you can call it colonial, but it is not something which is external to the evolution of the Indian subcontinent. When it comes to the issue of the civil service, I think Pakistan actually does have a pretty well-established consensus within the elite about what kind of a civil service it wants. Basically, we want a civil service which is highly responsible, highly responsive to elite needs and aspirations, and that can be controlled through a relatively small number of highly placed officials, generally belonging to a single or a couple of service groups. So when we look at our history in this sense, you know, you can go to the 1950s, late 50s, early 60s, there was a debate in which the Justice Cornelius Commission was on one side, and basically everybody else, including the army and the civil service, was on the other side. And in that report from 1962, what Cornelius basically said was, in a nutshell, of course, was that if you want the country to develop, then what you need to do is that you have to have specialized, subject-based, ministry-based services with integration between the ministerial and the field departments. And these services should then run all of the different specialized tasks that you want the state to run, you know, whether it's health or education or infrastructure or whatever. And this, of course, would mean that those specialists would rise to the topmost positions, and the old system, which was generally dominated by the civil service, the Indian civil service, and then later the civil service of Pakistan, that would be replaced by a bureaucratic structure in which you would have subject specialists running specialized departments, both in the field as well as at the ministerial, at the secretariat level. And this idea, of course, had a lot of other things to it. You know, he wanted there to be accountability of civil servants through a French-style council of state. There was a whole bunch of other things in it as well. And what happened, of course, with that report was that it ran counter to the interests of the AU military regime, and it also ran counter to the interests of the then very powerful and very prevalent sort of CSP cadre. And the reason why essentially this happened was that from the military government's perspective, they needed the civil service in a role of what would effectively be district governors in order to manage the basic democratic system that Ayub Khan had introduced to secure for him legitimacy. So for Ayub Khan, though he had a lot of regard for the civil service in general, as his own papers and correspondence reveals, he also felt that it was not in his political interest, in a sense, to replace this structure with a more specialized, professionalized kind of setup. Now, if we fast forward another 10 years to the Bhutto period, what you have is that, again, the political leadership this time, the civilian political leadership, they effectively dismantle much of the colonial legacy, in the sense of they reduce the powers of the Public Services Commission, they do away with various guarantees to the services, they introduce a far heavier quotient of politicization in appointments through the lateral entry scheme and through various other measures. And the result is that the civil service becomes even more generalized and even less responsive to the needs of specialized knowledge, subject knowledge, professionalism, et cetera, et cetera. So I would basically argue that, number one, the Pakistani power elite, if you want to call them that, whether military or whether civilians, they generally prefer the kind of state setup that we have. And it suits them. It suits them very well. And that is why you do not see any fundamental change in the sense of the level of professionalism or the level of emphasis on subject specialization, autonomy, etc. All of the things that we associate with a modern developmental state, a modern developmental bureaucracy. So that fundamentally is our problem in a sense. So I'll stop here. I think my time is up as well.
Rob, you'll definitely, we'll get you back in again. I think that's correct. The state does state and the elite does want the kind of civil servant that we have. So the next question that I want is, why is there a turf battle between the DMG, PAS, Commerce, PMC, PMS, etc.? There are these, we've created these groups that are constantly bickering and fighting. There is union buzzy in the sense that the DMG will get promoted, the commerce people want this, they want this, et cetera, et cetera. The poor economist group is nowhere, right? They don't even get to grade 20. There are reserved positions based on entrance tests. Somebody can go up to grade 20 because of 21, et cetera. I'll show you something on that later. I don't see this happening anywhere else in the world. I don't honestly see this happening anywhere else in the world. The UPS, I'll show you the UPS later, the Unified Pay Scales, that has kind of put everybody into a scale. It's like a communist system that's at work. Do we need one civil service with public servant, just a public servant without guarantees? Do we need many civil services? Do we need to give them guarantees that you'll get to grade 22, that you will stay on for life, you will do this, that, et cetera? I'd like the three people, or do we have different levels in different contexts? So I'd like Bajwa Saab to first respond, then Malik Saab, and then Mozam Saab. All three represent different services. So let's see what their views are. Bajwa Saab, bataiye. Tariq Bajwa? Can you hear me, Bajwa Saab? क्या हुआ भाई अभी तो बाजवा साहब नजर आ रहे थे चलें जी वेल बाजवा साहब इज वी आर ट्राइंग टू गेट हिम ऑनलाइन आप शुरू कर दें मलिक साहब
सर उनका माइक ऑफ है तारिक बाजवा साहब का
बाजवा साहब माइक ऑन कर लें कैन यू स्विच ऑन योर माइक
हेलो
हां गुड बाजवा साहब गो अहेड
जी थैंक यू जी अच्छा पहले तो आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विस एज इट इज टुडे जी we all talk about professional cadres. Now, if you look at the civil service today, and if you look at it in a broader sense, of course, there are the civil service would include, or the public service would include the physicians, the teachers, the engineers, who all have a professional cadres. Even if you look at it in a narrow sense from the civil service that we generally talk about, they're also, but for the PS, all other cadres are specialized cadres. If you join the audit and account service, you are in the audit and account service and you are a professional and a specialist in that service. You join the foreign service, you are a specialist in that service and you stay virtually throughout your career in that service. The commerce and trade people, the Indian Revenue Service, the Pakistan Customs Service, all of them are there. Now, they're also the departmental heads. Even in FBR, which sometimes used to be chaired by the PS officers, it's now becoming more of an aberration. And mostly if you look, these are all officers of their own service, either the Inland Revenue Service or the Pakistan or the Pakistan Customs Service who are chairing this. So those are all of those cadres are professional cadres in the sense that they are recruited for a particular service and they're trained for that service. And then they continue in that service. And then they eventually head that service also. The Auditor General of Pakistan is from their service, from the Audit and Account Service. All the Accountant Generals are from their service. The Controller General of Accounts is from their service. Similarly, for the other services also. Now, where the difference comes in, opinion comes in, is that whether when you are selecting them, should they be through one pool of candidates who are being selected to the Central Superior Services, or it should be from specialized examinations. There's a lot of debate on that, and we can continue, we can move on to the debate later on. But the fact remains that anyone who has been selected in a special cadre moves in that cadre and is a specialist in that cadre. How much of a specialist he is, what knowledge he has gained, again, is a matter of how much you have provided him pre-service training and in-service training. Now, let's come to the PAS. The Pakistan Administrative Service is a service of what is called generalist administrators. Now, when we talk of the provincial government and of the field assignments, they are given a very specific assignment and they are initially trained for that assignment. The training is meant to be field administrators at the level of the assistant commissioners, the deputy commissioners, and the commissioners in the field. And that's what they've been trained for. They were being provided judicial training, they were being provided revenue training, they were being provided administrative training and extensive training at that. The entire, you know, when I was trained, the training period was almost close to 30 months, 2.5 years. And then, of course, they go out in the field and then they also come back and work in the secretariat. Now, I think there is a difference of opinion or an argument is that at the secretariat stage, then there are most of these officers, most of the secretaries are from the PS. That is true also. But then that's an experience that we see in other countries also. Now, per se, it is neither good nor bad. We have to look at things and see whether it is delivering the objective for which it has been set, or it is not delivering that objective, and do an objective analysis of that, and do an objective contextualized analysis. So you can't compare the PS and say this, we found wanting vis-a-vis, you know, United States or France or some other country. But you have to do a contextualized assessment and evaluation in how are the other cadres or how are the other things we're doing in Pakistan. Generally, if you look at the world, Pakistan is looked now more or less as a dysfunctional state. So it's not just the civil service. I think it's a multi-pronged problem that we do have. Although that's no excuse for the civil servants not performing. Now, when we talk about generalist administrators taking key positions in the federal government and also in the provincial government, there are all sorts of models in the world. Even in the United States, which used to be having most professional civil service and the most lateral entry, in 1979, President Carter came up with this senior executive service concept. Today, the senior executive service, which spans the highest tiers of the US bureaucracy, except for specialized agencies like the intelligence agencies or the Civil Aviation Authority or the FBI, they're all being manned by the SES officers. The total strength of the SES officers in the US is 8,000, and 7,300 of those are career officers. So you know, we have these examples from developed countries also, from France, which has a very structured bureaucratic system in the prefect system that they have, in the Whitehall bureaucracy that UK has. I think then making a comparison, one must make a comparison close to one's environment. And to my mind, I think the closest to our environment is India, of course, where a very similar civil service is performing. And India is doing considerably better than what Pakistan is doing. So the question which goes begging is, why is it that the civil service can perform? The same civil service is performing, or the same structure of the civil service is performing in India and not in Pakistan. So I think we if we talk about, you know, countries that just because by changing our system, we are going to become another United States or another developed country, it's not going to happen. If Bolivia has adopted the US Constitution, has it become the United States? It has not. It continues to be the poorest country in the Southern, in South America, Latin America. So just by changing, you can't wish for an improvement. It has to be more in depth. We have to look at our system, see what is working in our system, in our context, and focus on that. And that, I think, is what is required now. As far as this infighting is concerned, that would be true of any organization. You know, look at any sector in Pakistan. You know, whether it's a cabinet, there's infighting even within a cabinet. They all represent the same political party or a coalition of political parties. There's infighting within them. There's a jostling for space within them. Similarly, for the for professional organizations, or even for the private sector organizations, there's always this competition or this infighting, as you call that. That can also be healthy also, because that promotes some sort of a competition and lessens complacency within the members of one group. So that, I think that to some extent, it's not bad, as long as we are able to manage it within certain limits. Anything that I missed, I would want to continue on that.
Don't worry. Malik saab, bataiye, how would you respond to these issues?
Achha, jo civil service hai, civil service implementing machine hai, us policy ki jo ke government leke aati hai. Main thoda sa historically isme batana chahunga ke jab 1947 mein Pakistan qaim hua, to jo Independence Act ka section 10 tha, वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने डिलीट कर दिया. वो सेंट्रल सर्विसेज के बारे में था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना साहब स्टेट के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर थे कि पाकिस्तान एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होगा, जिसमें इख्तियारात फेडरेशन और सूबों के दरमियान मुसावियाना तरीके से या बड़े अच्छे तरीके से तकसीम किए जाएंगे. अच्छा, इसके बाद क्योंकि हमारा कोई सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर हमने इनहेरिट ना किया इस क्लॉज के बाद, तो बहुत ज्यादा इन फाइटिंग रही, यहाँ तक कि 1954 में जाके CSP रूल्स बने. अच्छा, CSP रूल्स क्योंकि मलिक गुलाम मोहम्मद साहब उस वक्त गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने दो चीजें की जो इस मुल्क को अभी तक भुगतना पड़ रही है. एक, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व की, और जो दूसरे, उन्होंने CSP रूल्स बनाए. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो CSP रूल्स बने हैं ये विदाउट एनी लॉ, बगैर किसी कानून के बने हैं और बगैर किसी लॉ सपोर्ट के बने हैं, और ये बने हैं एक एग्रीमेंट से कि उस वक्त के जो हमारे प्रोविंसेस थे वो बैठे हैं गवर्नर्स के जरिए, और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, और प्रोविंशियल पोस्ट्स उन्होंने CSP के लिए ईयरमार्क किए हैं. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, जो बाद में अभी तक एक चीज चलती आ रही है. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपने सिविल सर्विस को खड़ा करना होता है, जैसा आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो. अब अगर आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर टू थ्री थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है उसको बताता है, जिसमें अगर आप देखें कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, और जो बाकी सारी मामलात हैं वो अब सूबों को दे दिए गए हैं 18th अमेंडमेंट के बाद. तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर सिविल सर्विस खड़ी होगी, क्योंकि सब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी सिविल सर्विस. अगर अब सपोज करें कि अगर एक सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का है, तो उसको एग्जीक्यूट फेडरल सिविल सर्विस ही करेगी. ये स्पेशलाइज कर लें जिस तरीके से आप उसको लेके चलें, और जो सूबे के मुतलका सब्जेक्ट्स हैं उसको सूबे की सिविल सर्विस को एग्जीक्यूट करना चाहिए. ये एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनोमली है, जो एक चलती आ रही है, जो कि गवर्नर्स को बहुत तरीके से उसने मुतासर किया. मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल देता हूँ. अब जैसे फेडरल सर्विसेज के लोग अगर आके सूबे में तहसीलों में काम करेंगे, या इजला में काम करेंगे, या डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे, तो वो प्रोविंशियल लॉ के अंदर आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं. अगर सूबा अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपनी सिविल सर्विस को अकाउंट फॉर ही नहीं कर सकता, तो इसमें बहुत मुश्किल होगा उस पोलिटिकल एग्जेक्टिव के लिए, उस पोलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, कि वो अच्छे तरीके से गवर्न कर सके चीजों को. क्योंकि पहला फंडामेंटल पोजीशन यही है कि जो इम्प्लीमेंटिंग मशीन है उसको हर सूरत में पॉलिटिकल एग्जेक्टिव या कंसर्न गवर्नमेंट के मतहत काम करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस. तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली है, इसको दूर करने की जरूरत है. दूसरी जो बात हुई है जनरल कैडर की, यस, जनरल कैडर भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि दुनिया स्पेशलाइज्ड कैडर्स की तरफ जा रही है, और जनरल कैडर को भी महदूद करने की जरूरत है. लेकिन जनरल कैडर की अफादियत भी अपनी जगह पे मौजूद है. जनरल कैडर की अफादियत को अगर आप एक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और उसको ज्यादा प्रोफेशनल कर देंगे, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है. अच्छा, इधर एक और डिस्कशन हुई कि जब भी हम देखते हैं कि सिविल सर्विस में ज्यादा HR के ऊपर बात होती है, जैसे आजकल भी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो रही है, बल्कि एक टास्क फोर्स बनी हुई है, हमने भी उनके साथ बात की, वो जो उसके बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर नहीं जा रही, वो उसके HR के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर जा रही है, कि इसका ह्यूमन रिसोर्स कैसे बेहतर किया जाए, इसकी ट्रेनिंग कैसे की जाए, इंडक्शन कैसे बेहतर की जाए, लैटरल एंट्रीज हो या दूसरी चीजें हों. ये अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपने कुछ बुनियादी इश्यूज जो हैं वो हल करने हैं सिविल सर्विस के। अगर वो सिविल सर्विस के इश्यूज हल नहीं होंगे तो वो इश्यू जो अभी तक चलते जा रहे हैं वो हमारे इश्यूज चलते जाएंगे जो गवर्नेंस के कोर इश्यूज हैं। तो जो हम समझते हैं जो यह होना चाहिए कि जो आपकी सिविल सर्विस है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसको आपके आइन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर वो आइन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो वो बहुत मुश्किल होगा गवर्नेंस करने के लिए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट होनी चाहिए। आप अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जैसे आपने अभी कहा था कि कितनी सर्विसेज होनी चाहिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 गवर्नमेंट्स डिफाइन की गई हैं। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। 140A जो आपकी लोकल गवर्नमेंट को करता है डिफाइन। अगर 3 तरह की आपकी गवर्नमेंट्स हैं तो 3 तरह की आपको सर्विसेज चाहिए। फेडरल सब्जेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फेडरल सर्विसेज चाहिए। प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं, जो रेजिडेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल सिविल सर्विस चाहिए। और इसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग लोकल सर्विस भी चाहिए जो आपके लोकल सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करे। और ये जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए उस एग्जेक्टिव को जो इलेक्ट होके आती है, जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे वो सूबे में है, चाहे वो फेडरेशन में है। जब तक सिविल सर्विस कंप्लीमेंट्री नहीं होगी अपनी रिस्पेक्टिव जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है और लेजिस्लेचर है उसको जवाबदेह नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और इवन क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी, तो बहुत ज्यादा स्केप गोट्स मिलते रहेंगे सिविल सर्विसेज को और बहुत मुश्किल होगा चीजों को आगे लेके जाना। तो सबसे पहले काम करने वाला है सिविल सर्विस शुड बी रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरकीब है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, उसके मुताबिक जो है वो सिविल सर्विस को शेप देना चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर आप इसके स्ट्रक्चर्स बेहतर करें, जो इसकी HRM प्रैक्टिसेस हैं उसको खत्म करें, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है या जो स्पोर्ट्स सर्विस है उसको इम्प्रूव करके लेके आए। बल्कि HRM के ऊपर भी मैं एक बात करना चाहूंगा कि हम ये देखते हैं कि
बाद में आएगी, बी ए कमिंग, अभी इस लेवल को कर ले फिर आगे चलते हैं, ठीक है।
हाँ, जो हम समझते हैं कि सिविल सर्विस को आईने पाकिस्तान को कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए और जो एक स्ट्रक्चर, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आईने पाकिस्तान मुहैया करता है सिविल सर्विस को, उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे कि एक सिविल सर्विस को उठा के दूसरी सब्जेक्ट्स में डालेंगे, दूसरे की डोमेन में डालेंगे, तो इस तरीके से काम नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जनरल काडर की, लास्ट वन पूरी दुनिया में कोई जी
उसी आयन के अंदर आर्टिकल 240 है वो ऑल पाकिस्तान सर्विस को भी क्रिएट कर रहा है, तो ये नहीं है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर।
सर मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, इसको रिस्पॉन्ड कर दू, सिर्फ एक मिनट सर, ऑल पाकिस्तान सर्विस को मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ।
Make it into an argument. Yes, we are trying to learn. ठीक है ना, वो ठीक है। अच्छा मौज़म साहब, जरा बताइए कि ये इन उन्होंने कहा है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों एक लिहाज से तो बात ठीक कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लोकल सर्विस को क्रश करने की फिक्र में है सब। आपका क्या ख्याल है, बोलिए, एज फार एज लोकल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड।
सर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत हद तक सही है कि ये वो अनफॉर्चुनेट सर्विस है कि जिसका किसी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है सर्विस को। और एक्चुअली ये इत्तफाक की बात है कि आप अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो म्यूनिसिपल जो एक्ट्स है 1911 का, उसमें जो इनिशियली जिस वक्त ये लोकल गवर्नमेंट्स ने एवेल्युएट किया और यहाँ पे आना शुरू हुई, under that law it was that municipal committees or local governments were empowered to appoint their own officers as well as officials, aur unki tankha aur baki jitni bhi cheeze thi wo sari ki sari jo thi they were with the local government. Now what happened in April 1964, हुआ ये कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1960 इसके तहत एक लोकल कौंसिल सर्विस क्रिएट की गई जो कि प्रोविंशियल लेवल पे थी, और वहां से इन्होंने इस तरह किया कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास जो पहले इख्तियार था उसमें से टू द एक्सटेंट ऑफ ऑफिसर्स इन्होंने क्ला बैक कर लिया, और दैट वाज स्टिल विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट बोर्ड्स व्हिच हैव नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर बजट इज बीइंग funded by the local governments and it is headed by the respective secretary of the local government department who is the ex officio chairman of the board. So they are actually managing the human resource management of local governments since April 1964, aur yahi cheez abhi tak chali aa rahi hai. Another attempt which I would like to highlight was made when local government ordinance 2001 was promulgated, and through an amendment in this provision was of district service, creation of district service was provided in that law. Aur uske tahat unhone kaha ki ye independent service jo unsi hai district level pe जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स के फंक्शंस डिवाल्व फंक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए वो जो है वहां पे सर्विस मौजूद होगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इवन लोकल गवर्नमेंट जो कमीशन था इसका रिफॉर्म का, डॉक्टर इशरत साहब का पहले जो सा था, उसमें आप ये देखेंगे कि उन्होंने बाकायदा इस जो चीज थी इन मई 2008 की जो रिपोर्ट थी उनकी नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म, उसमें बाकायदा इस चीज को कहा गया कि जी इसको जो सा है प्रोसीड किया जाए बट इन फेजेस, और जो सा है प्रोविंसेस जो उनसे हैं और बाकायदा इसको अबालिश किया जाए प्रोविंशियल लोकल काउंसिल सर्विस को, और जो इनकम्बेंट्स हैं बिलोंगिंग टू दिस सर्विस बी अब्सॉर्ब्ड इनटू डिस्ट्रिक्ट सर्विस विद फुल प्रोटेक्शन ऑफ देयर टर्म्स एंड कंडीशंस. बट दिस वाज हाउएवर नॉट इंप्लीमेंटेड बाय द प्रोविंसेस, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट योर अटेंशन टुवर्ड्स अ रीसेंट इंटरव्यू व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द डेली न्यूज इन द लास्ट संडे, यू नो. And what he has said, Dr. Ishrat Hussain, that it must be emphasized that these reforms should be seen in the context of an empowered, devolved, and fully resourced local government system, as the delivery of public service take place at village and town level and not federal and provincial level. The new local government acts approved by Punjab and KP assemblies would strengthen the local bodies whose head would be directly elected by the people and operate with the assistance of civil servant. I appreciate what he has said, but the ground reality is quite opposite. As I have mentioned that the heads of the local governments have a very limited power to the extent of lower appointment of lower staff, and rest the powers are with the government. Even he can't create a post, he can't abolish any post from it, the schedule of establishment, he can't even appoint, if he has a budget, if there is any restriction imposed by the government. So this is what is happening with the local governments. Despite that ke इसमें वो जो मलिक साहब, तारिक मलिक साहब ने बात की, और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये समझता हूँ कि जो आर्टिकल 240 है, ये 140A, लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर सर, डॉक्टर साहब, तो आई हैव पॉइंटेड आउट कि ये एडिक्वेट नहीं है, ये प्रोविजन 140A की. एज फार एज द आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, I think there is a deficiency in it when because here in 140A they are stipulating that administrative authority shall be transferred to the elected representative, but corresponding, which I feel in Article 240, there is no mention of such service, which I think ke local government service ka wahan pe particularly wahan pe federal service provincial service ka zikr zarur hai lekin local government ki service jo unsi hai that is not mentioned. So this is you know happening, and as far as I think the HRM system at the level of the local government is fragmented. It is divided between provincial government and local governments, and at the same time highly centralized, as most of the power rests with the provincial government. Officers posted in local governments always look towards their parent department instead of assisting and supporting the head of local governments and council, wholeheartedly enabling them to perform their due role in providing essential municipal service. This duality of command is not in favor of smooth functioning of these institutions. Moreover, Fulton Corporation and Municipal Corporation, they can be posted, but they are posted occasionally. And these are manned by the provincial local council service officials.
Sir, आपका माइक म्यूट है सर, कह रहे हैं आपका माइक म्यूट कर देना दीप साहब.
Hello, do you hear me? Okay. I can't hear you, sir.
Dr. Nadeem, ji sir.
Maine kar diya. I can. जो कल निकला था ये निकला था कि गवर्नमेंट हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये पांच हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स बड़े तकड़े थे, रिक्रूटर्स, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, एचआर हेड ऑफ पीटीसीएल, एचआर हेड ऑफ फलाना फलाना, हमारे पास बड़े लोग थे. उन्होंने सारों ने ये कहा कि जी गवर्नमेंट हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एचआर. गवर्नमेंट जब अपॉइंटमेंट्स करती है खास तौर पे regulatory agencies, VCs, ये वो जो apart from the civil service appointments होती हैं, they are all rigged, they are all very badly done, ठीक है, with the result that we've got about पता नहीं 50-60 agencies that are lying vacant now. अब इसकी कौन responsibility लेगा, जो agencies vacant रह जाती हैं, जो भरी नहीं जाती हैं, उसकी कौन responsibility लेगा? After all वो भी तो कोई function perform करती हैं, सिर्फ function एक तो नहीं perform होती. तो हर कोई कहता है मेरी नौकरी, but बाकी भी तो system पूरा देखे. मैं तो एक as a citizen बात कर रहा हूँ, हमारे system में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में क्या है. अच्छा, दूसरी चीज देखें कि हमारे पास जो इंसेंटिव्स हैं सबके, पीएमएस भी देख रही है सिविल सर्विस के इंसेंटिव, लोकल गवर्नमेंट, जब हर जगह इंसेंटिव दिए हैं, तनख्वाहें मिलती नहीं ज्यादा, तो लोग कहीं ना कहीं से हाथ मारते हैं पैसे लेने के लिए, चाहे पर्क्स हो, चाहे बोर्ड अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे कोई और तरीका हो, चाहे इवन रिश्वत हो, लोग हाथ मारते हैं. फिर दूसरी चीज है पोस्ट रिटायरमेंट, लोगों को तकलीफ होती है, फिर वो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ढूंढते हैं, फिर हम ये सोचते हैं. रेगुलेशन, हमने इतनी रेगुलेटरी बॉडीज बनाई हैं, आज तक नहीं चली, क्योंकि उनकी सिविल सर्विस से झगड़ा रहता है, कभी निकलता है बंदा, कभी आता है, कभी निकलता है, कभी कुछ होता है, कभी अपॉइंटमेंट गलत होती है, कभी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट आ जाता है. ये एक मेस भी चल रहा है जिसको हमें देखना चाहिए. फाइनली वी हैव अ परमिशन इकोनॉमी, लोकल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बनाने देती, ये भी मेरा झगड़ा उनके साथ चल रहा है बड़ी देर से. जंजुआ साहब ये भी सुने, लोकल गवर्नमेंट ने हमें बड़ा सख्त मुसीबत क्रिएट की है, और परमिशन इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी परमिशन इकोनॉमी है, हर चीज के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लो. मुझे तो बंदे कहते हैं कि यार तुम्हारे एक बंदा होने के लिए भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए किसी मिनिस्टर से या किसी सेक्रेटरी से. एफिडेविट चाहिए जनाब, वो हमारे पास आईडी कार्ड है, मुझे अगले दिन मिला कि आईडी कार्ड की एफिडेविट लेके आओ. मैं आईडी कार्ड का एफिडेविट लेके गया किसी सेक्रेटरी के पास लेने के लिए. सो ये जो पावर रेंट गेम है ये भी अपनी जगह है. दूसरी चीज देख लें जी, हमारे शहर ये अब जंजुआ साहब को टच करेगी हमारे शहर, फैलाओ का फैलाओ, गड़बड़ सख्त गंद, घर कोई है नहीं, वगैरह वगैरह चीजें, हमारे मेस ऑफ कार्स एंड पोल्यूशन ओवर रेगुलेटेड टू द एक्सटेंट के बंदा कोई खोखा नहीं लगा सकता, कोई घर नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, बेचारे रो रहे हैं लोग बैठे हुए। ठीक है, हमारी सिटी इज रन बाय ग्रेड 1920। क्या होता है जी डी जी एल डी एट कमिश्नर की डीसी क्या होता है? ग्रेड 1920 होता है। प्रोफेशनल जो उनसे टाउन प्लानर है वो ग्रेड 19 तक जा सकते हैं। यार इज दिस द निजाम वी वॉन्ट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ वगैरह, छोड़े, हमें नहीं चाहिए था सिग्नल फ्री कॉरिडोर मेट्रोज, लाहौर से पूछे किसी को नहीं चाहिए थे, हमने केस भी किया था, सिविल सर्विस ने केस को रद्द कर दिया, जजेस ने मिलके, और जनाब मेट्रो सिग्नल फ्री कॉरिडोर हमें मिल गया, जो आज तक हम चाहते हैं वापस करते हैं, हम उनको एक ना एक दिन इनको मिटा भी देंगे। ठीक है, मुझे बताइए ये किसका कसूर था? ठीक है जी, टावर क्रेन्स कहाँ है जी? लोकल गवर्नमेंट ले लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले लें, हमारे शहरों में टावर क्रेन्स नहीं। मैं 20 साल से पूछ रहा हूँ ये सवाल, कौन सा शहर है जो आबाद हो सकता है विदाउट टावर क्रेन्स? मुझे आज तक दुनिया में दिखा दें कहाँ है। आप बात करते हैं दुनिया की, ये तो देख लें टावर क्रेन्स हैं। लोकल गवर्नमेंट इज रन बाय द सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, जंजुआ साहब ने ऑलरेडी कह दिया। फिर देखें रेगुलेशन अटैच डिपार्टमेंट्स, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ चीजें, फिर आप रिस्पॉन्ड करें सारे। एनर्जी का मैस 3-4 trillion रुपए का हो चुका है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम वो हुकूमत पर डालते हैं, कमीशन बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, पर मुझे याद है कि सेक्रेटरी कभी नहीं कुछ कर रहे, हर किसी के काम में इंटरफेयर करती है सिविल सर्विस। कोई इदारा अटैच डिपार्टमेंट हो उसने क्या हालत है? डीसी जनाब हेड कर रहा है बोर्ड फॉर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, उसकी बोर्ड की मीटिंग ही नहीं कभी होती, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी तबाह हो रही है, खुदा के वास्ते ये तो चीजें बंद हो सकती कि नहीं? सेक्रेटरीज बैठे हुए यूनिवर्सिटीज के बोर्ड्स पे, मीटिंग पे ही नहीं आते भाई, क्यों बैठे हुए बोर्ड पे? हर लॉ में क्यों सेक्रेटरी लग जाता है? ये चीजें तो नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन कहती। अपॉइंटमेंट्स गंदी होती है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की अपॉइंटमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की बार बार कोर्ट में जाती है, फैसलाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट कोर्ट में गई, भाई क्यों गई? ये भी तो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कहता मेरी मेरा जमा दोष पोष, भाई ये तो बात नहीं हो सकती ना, समबडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। ठीक है जी, व्हाई कांट वी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमाइज प्रोफेशनल, व्हाई कांट वी हैव एन ऑटोनोमस एजेंसी, व्हाई इज पंजाब यूनिवर्सिटी नॉट ऑटोनोमस, व्हाई इज न्यू हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल नॉट ऑटोनोमस, व्हाई कांट वी डिसेंट्रलाइज? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाजवा साहब ठीक कहते हैं यूएस में, पर यूएस में अगर आप याद एक मूवी याद हो इन द हीट ऑफ द नाइट, इट इज ऑल a difference between federal and local government. Federal government, local government. Obama had to apologize to the local government when he accused a policeman of doing wrong. ये भी चीज है। अच्छा जी, मुझे इसका जरा आप लोग सारे इन तीन जो चीज है, मैंने तीन स्लाइड आपके सामने लगाई है, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा इन पे, बाजवा साहब आपका क्या रिएक्शन होगा?
देखिए जहां तक रेगुलेटर्स का ताल्लुक है, रेगुलेटर्स का है तो ये देखा जी कि फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन इज विद डिफरेंट गवर्नमेंट्स, regulators are ideally the government's perspective is that the regulators should be like children, only meant to be seen not to be heard. So natijatan aap unki jo hai aap unko chahte hain ki wo raaye lekin marzi hamari kare, aur hamara directive hai, aapne laws ke andar bhi kiya hua hai, aapka sare jo regulatory acts hain uske andar ek provision aaya hai ki federal government unko direction de sakti hai. Acha ab hamare yahan aapse ye bhi arz kar do कि जहां ऑटोनॉमी दी भी गई है वहां भी द कंसर्न्ड ऑफिसर्स आर फियरफुल, आर एप्रिहेंसिव ऑफ यूजिंग दैट ऑटोनॉमी, एंड टुडे द कल्चर इज दैट दे वुड वांट टू ब्रिंग थिंग्स अप टू द ईसीसी, टू द कैबिनेट, टू द फेडरल गवर्नमेंट, ऑन टू द मिनिस्ट्री कंसर्न, इवन वेयर दे आर फुली एम्पावर्ड. ये एक ऐसा एनवायरमेंट ऑफ फियर क्रिएट कर दिया गया है जिसके अंदर नोबडी वॉन्ट्स टू टेक एनी डिसीजन. And as a result of that, not taking a decision, you know, you just sit back and relax. If you take a decision, you never know, even 10 years from now, 15 years from now, somebody is going to ask you a question. Now, decisions are taken at a certain point of time and in a certain environment. Hindsight is 20-20. So, aap ye theek keh rahe hain ki regulators ke paas hum space unko nahi de rahe hain. But mera apna experience ye hai ki jahan unko ye space di bhi gayi hai, wo usko exercise hi nahi karna chahte hain. Why is that? I think that's a, why is it that if the regulators have that authority, why is it that they're not exercising that authority?
Bajwa sahab, thodi si yahan main aap se ikhtilaf kar lun, I don't want to be here, but Khalid Mirza is one such regulator. He was with us on a webinar day last week. He did assert his authority. He did do Competition Commission and SECP very well. And he says the civil servant got rid of him. Please explain that.
Okay, I really don't know. I don't know the details of that, but whether it was the civil service or he fell on the wrong side of the government, I really don't know. But I think it was above the pay grade of a civil servant what happened to him. This is my assessment or evaluation without knowing the facts. It was not the civil servant, only the one sitting on the hill can do that, or next to the hill can do that, but otherwise no other can. Not being the chairman of the policy board of the SECP. Having said that, I think that's true also that, as I've said, main to shuru yahan se kiya tha. Regulators are ideally to be like children and to be seen, not to be heard. That's what, you know, it's good window dressing. When you talk to your development partners, to your donors, you know, when you talk, go about, you can say, we have this regulator, make you feel good that we're doing everything that good governance requires us to do. But they are not really being empowered. But at the same time, I'm not condoning any of the interference of the government in the work of the regulator. But what I'm saying is, from my observation, is that it's not just, it's a two-way street. The regulators don't want to assert themselves also. You see, as the Tocqueville said, the cost of the price of liberty is constant vigilance. They also have to be vigilant. And nobody's willing to do that, but everybody's willing to take the soft line. So that's another issue that you have. So that's as far as the regulators are concerned. Some of the other issues that you said on the civil servants, I think from my experience, of having been in the civil service and now having the luxury of looking back, not being an active civil servant, I think one of the biggest criticism I would make on my own service is that we have not allowed the professionals to grow, whether they are the engineers or they're the doctors. Now, what happens is, and I'm self-criticizing, what happens is that, you know, we have been trained, we have been exposed, and we have had experience of different ministries. And we have the necessary educational background also, the ability to speak also, you know, because of our experience. And we quickly grasp the jargon of a particular department. And having learned that jargon, we become experts in that. And once we become experts, we don't allow the experts to speak up. Now, because the experts don't have that exposure, because the experts have not been given the necessary training, they're always found wanting when they are being asked to speak at a public forum in the cabinet or in the ECC. I remember in one cabinet meeting, the chief of one of the agriculture organizations was asked to make a presentation to the prime minister. The prime minister said, you have 10 minutes. That professional, and I know he's a good professional, took more than 80 minutes and still was not able to convey what he wanted to say. So that is our failing. That is our, you know, that is the responsibility of the civil service, because we have not allowed them to groom, or not allowed them to come up. So I think that to that extent, I would agree with you. But otherwise, I think in the absence of that, in the void, the civil servant steps in, he is articulate, he knows how to make a presentation, he has the exposure. Once you've been exposed to the cabinet, the second time you go to the cabinet meeting, your confidence level has grown exponentially. You know what it is all about. So, and then he also knows the jargon. So that's how he comes up and makes a good presentation and get accolades for what he's done. But then he does not have the depth of knowledge. So I think that is where our system is lacking. When 911 happened, I was posted in Los Angeles. And the level of specialization, the specialists was such that they had brought on the television two experts who had done their PhDs, doctoral thesis on Tora Bora Caves. I, as a Pakistani, had never ever heard of Tora Bora Caves before, right next to Pakistan, but I never heard of that. And here were the specialists who had done their two doctoral thesis on those. So I think we need a civil service is required, but we also need the professionals to be groomed, the professionals to have greater say in professional issues, and then bring them out from the shell. And unless we're able to do that, we will not be able to get the level of professional input into our decision making that is required.
Gee.
As far as the initiative, incentives, and the perks are concerned, I think that it's a valid question. But foreign trips are rare for officers. Some of the officers, it may be true for some officers also. Boards are only true if you are at a very senior level. Otherwise, you never get a board appointment. Perks are those that are there. Some people would want to grab more perks than what they have. But the core issue is, I think, and that is what we need to see, I think. Are we getting the best and the brightest in the civil service? Are we training them according to the requirements? Mm-hmm. Ask the establishment division, when was the last training need assessment done for different levels of civil service?
Good question. Very good.
Mm-hmm. Never probably. Even if you have to train health visitors, lady health visitors, you do a training need assessment first. What is it that is required of that lady health visitor? And then you only impart them training. And here we have never ever done a training need assessment. We think whatever is being done by the National School of Public Policy or by the National Defense University to a limited margin, because some civil servants go there, they know what is best for us. No, sir, they're only service providers. It is for the establishment division to tell them what sort of training is required. And unless you do that, you'll continue to have the sort of civil servants that you are having.
Let's see. Malik Saab, what would you say?
अच्छा एचआरएम के सीरियस एचआरएम के ना सीरियस इश्यूज हैं इंडक्शन से लेके उसको सस्टेन करना और उसको आगे लेके जाना. अच्छा मैं जो हमने देखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जो सिविल सर्विस है उसके एचआर के ऊपर तो मेहनत भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, वो जाहिर है कंपेटिटिव मोड से आते हैं, लेकिन उसके साथ जो आपके दूसरे एग्जीक्यूशन बॉडीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो स्पेशलाइज फील्ड्स होती हैं, उनके एचआर के ऊपर बहुत सीरियस इश्यूज हैं. अच्छा एचआर अगर आप बेहतर भी ले जाएं तो जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत मुश्किल हैं. अभी सर बात कर रहे थे तो हमारा एक कोडेड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है कि हर चीज लिखी हुई है, हर स्टेप के ऊपर 3-4 रेगुलेशंस हैं. वो रेगुलेशंस पास करते करते आपका बहुत ज्यादा टाइम भी जाया होता है और आपकी एनर्जी भी जाया होती है, और एट द एंड ऑफ द डे आप ये समझते हैं कि आपने अगर एक कॉरेस्पॉन्डेंस भी करनी थी तो वो सुबह से शुरू होकर शाम तक वही रहती है. जो कोडेड प्रोसीजर्स हैं इसको खत्म करना बहुत जरूरी है.
तो मैंने लाल में लिखा हुआ है परमिशन इकोनॉमी, इसके बारे में तो बात करें ना कि हमें तो यहाँ टीचर की तरह पेशाब करने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती है.
वही मैं कह रहा हूँ कि इतना कोडेड लॉ है कि आप कोई छोटा सा भी, आपने जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी एनओसी की बात की कि पाकिस्तान का शहरी करार देने के लिए भी हमें एनओसी की जरूरत होगी, जबकि आईडी कार्ड हमारी जेब में होगा. एक ये कोडेड लॉ जो है ना, इसको आपने बहुत बहुत रिलैक्स करना है, इजी करना है, ताकि एचआर के लिए रूम आए, स्पेस आए काम करने के लिए. अच्छा इसके साथ एक और चीज जो हम अक्सर मिस करते हैं वो स्पोर्ट एचआरएम है. अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस देखें या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस देखें, उसमें एक जो डिफरेंस आ रहा है कि वो एक स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक स्पोर्ट एचआरएम का आ रहा है. जब हम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं तो अगर हमने ड्राफ्टिंग भी करनी होती है तो हमारे पास दो दो स्टेनोग्राफर्स होते हैं, हमारे पास 3-3 क्लर्क्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, तो एक नोटिंग करने के लिए 10 बंदे बैठे होते हैं. आई थिंक वो स्पोर्ट स्टाफ जो है उसको भी बहुत ज्यादा आपको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, बल्कि खत्म करने की जरूरत है. जो आपका सिविल सर्वेंट है या जो आपका स्पेशलाइज केडर में लोग आ रहे हैं, उन्हें खुद कम्युनिकेशन आईसीटी स्किल्स उनकी होनी चाहिए, उनके बाकी सारी स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें. ये एक बहुत बहुत बड़ा इशू आ रहा है. और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की बात. अच्छा पब्लिक एचआर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन जो हमने देखा है जो हमारा प्राइवेट एचआर है उसकी कैपेसिटी के भी सीरियस इश्यूज हैं. अगर आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, अगर वो काम नहीं कर रही तो हमारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रही. तो एचआर का क्राइसिस जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल है. वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी पाया जाता है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी पाया जाता है. उसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है, और जाहिर अच्छी एजुकेशन से, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी रिसर्च से, अच्छा सिस्टम डेवलप करने से होगी. मौजूदा जो आपका निजामे तालीम है, जिस तरीके से वो डिग्री दे रहा है, उसमें बहुत मुश्किल होगा अच्छा एचआर लेके आए.
शहरों के बारे में बताएं ना, आप लोगों ने शहर हमारे क्यों मारे.
अच्छा अर्बन डेवलपमेंट. अच्छा अब
कर दिया है वो, बताइए ना.
अच्छा अब अगर आप अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ की भी जरूरत होती है। एचआर का तो अपनी जगह इशू होता है, लेकिन जो पब्लिक डेवलपमेंट है उसमें एचआर से ज्यादा आपकी पॉलिसी मैटर करती है, पॉलिसी गाइडलाइंस मैटर करती है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तो बहुत देर में आती है, अभी आपने डीसी साहब की बात की भी और डीजी की भी बात की, लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है अर्बन डेवलपमेंट में, वो पॉलिसी मेकिंग्स आती हैं, पॉलिसी डिसीजंस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकली ड्रिवन है, जिसकी वजह से हमारे शहर तबाह हुए हैं। अभी अगर आप लाहौर की एग्जाम्पल दे रहे हैं तो हमारे पास वेजिटेबल बेड ही नहीं है लाहौर का, वो बेसिकली एक आपका एक जरई डिस्ट्रिक्ट था जिसके साथ एक बड़ा सेफ किस्म का वेजिटेबल बेड था। मैं इसके एक एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि जब इधर दूसरे लोग आए अपनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के लिए, दूसरी स्कीम्स के लिए, तो जो भी डिसीजंस आए वो यही आए कि इनको काम करने दिया जाए, और एलडीए जो थे या जो दूसरे हमारे इदारे थे वो बिल्कुल इस चीज को खत्म ना करवा सके। और आप अगर आप लाहौर को देखें तो ये 60-70 किलोमीटर्स है एक साइड से दूसरी साइड, तो ये इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा पॉलिसी लेवल के डिसीजंस हैं, और शायद इसमें सिविल सर्विस का इतना कसूर नहीं है अर्बन डेवलपमेंट में जितना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का और दूसरे लोगों का है जो डिसीजन मेकिंग में रहे हैं।
नदीम साहब, कैन आई इंटरप्ट? आई एम फ्रॉम इंग्लैंड एंड आई
जॉइंड साहब, वी आफ्टर द ऑडियंस के लिए बाद में आएगा, अदरवाइज वी विल हैव कियोस। Can you just finish the panel? Then you can, obviously you'll have a lot of time to speak. ठीक है जी? अच्छा देखिए जी, क्या कहते हैं जंजुआ साहब, ये जरा बताइए कि ये जो कह रहे हैं अपना तारिक साहब, I totally disagree. मेरे पास personal experience है। शहबाज शरीफ ने मेरे साथ fully agree किया था कि लाहौर में high rise development होनी चाहिए। हमारी पूरी debate हुई, witnesses मौजूद है। Civil service में नहीं हो सकती, हाँ चीमा ने कहा नहीं हो सकती, मेरा ख्याल आपने भी विटनेस किया होगा। तो ये बात कहना है सिर्फ सब कुछ मिनिस्टर पे फेंक देना, आई एम सॉरी नॉट ऑन, सिविल सर्विस डजंट वांट डेवलपमेंट ऑफ लाहौर पीरियड, एंड इट इज आई ब्लेम द सिविल सर्विस फुली। आज भी इमरान खान कह रहा है हाई राइज डेवलपमेंट हो, रोक कौन रहा है? रोक सिविल सर्विस रही है, सीडीए रोक रही है, एलडीए रोक रही है, और हमने इसको डॉक्यूमेंट भी किया। बताइए इसके बारे में जंजुआ साहब।
डॉक्टर साहब, जो आपने चीजें पॉइंट आउट की हैं मैं उनसे टोटली अग्री करता हूं, परमिशन इकोनॉमी और ये सारी चीजें, एनओसी वाला जो जिक्र किया है। मैं आपकी अटेंशन इस तरफ इनवाइट करूंगा कि आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट कोई भी उठा लें, उसमें एक प्रोविजन है और वो पावर रिगार्डिंग फ्रेमिंग बाई लॉज जो है वो प्रोरेगेटिव है लोकल गवर्नमेंट्स का। अब बाई लॉज का प्रोग्रेटिव क्यों दिया गया लोकल गवर्नमेंट्स को, और वो उसका जो स्टेटस है एज पर लॉ जो उनसे है वो इफ दे आर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट लॉ दे हैव द पावर ऑफ लॉ। आप बाई लॉज की इस हद तक जो उनसे है सेंक्टिटी है। अब हमारे यहाँ ये हुआ है दो चीजें जो उनसी अनफॉर्चुनेट दो तीन चीजें जो उनसी हैं, ये सारी चीजें आगे चल रही हैं। एक तो यह है कि ईच मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शुड हैव देयर ओन बाई लॉज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट। लाहौर भावलपुर से नहीं मिल सकता और ना भावलपुर की रिक्वायरमेंट आप लाहौर से मिला सकते हैं। अब ये चीज जो है ये चीज इस वजह से हो रही है कि लोकल गवर्नमेंट्स का जो ये हक था उससे उसको लॉ में प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना लोकल गवर्नमेंट ने इसको एग्जर्ट किया बाई लॉज बनाने के, यानी बिल्डिंग बाई लॉज, जोनिंग बाई लॉज और ये सारी जो आप इश्यूज बता रहे हैं इसमें इन्होंने भी एग्जर्ट नहीं किया, और अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क दे दिया जो कि जो उनसा है स्टेट जैकेट, यानी कि फिट फॉर ऑल है। यानी कि वो अगर आप राजनपुर में बैठे हुए हैं तो वो वही ला वहां पे भी अप्लाई हो रहा है, अगर आप मरी में हैं तो वहां पे भी वही ला अप्लाई हो रहा है, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन लाहौर में हैं वही ला अप्लाई हो रहा है वहां पे। तो अब ये जो चीजें हैं ये बाई लॉज एक मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी खराबी जो आ रही है वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास ये पावर थी, इसको ना एक्सरसाइज लोकल गवर्नमेंट ने किया अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कैपेसिटी रीजंस और व्हाटसोएवर, और दूसरा यह है कि इसको इनकरेज भी नहीं किया गया कि वो हर लोकल गवर्नमेंट जो उनसे है वो अपना अपने जो एरिया के हिसाब से जो उनसे है वो रेगुलेशन फ्रेम करे। अब रह गई बात जो उनसे है वो जो आपने कही, ये तारिक मलिक साहब ने भी उसका हवाला किया है कि एग्रीकल्चर जो उनसे लैंड थी वो हमने जिस तरह एजुकेशन का सिस्टम जो उनसे है वो प्राइवेट को दे दिया इन्वेस्टर्स को, सिमिलरली व्हाट वी डिड कि हमने हाउसिंग स्कीम का पूरा सेक्टर, इससे पहले हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग करता था, डिपार्टमेंट करता था, वो डिपार्टमेंट भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हमने ये सारा फंक्शन उठा के प्राइवेट ओनर्स को दे दिया, प्राइवेट इन्वेस्टर डेवलपर्स को दे दिया, और उसको हम प्रॉपर रेगुलेट भी नहीं कर सके, और विद रिजल्ट ये हुआ है कि ये हाउसिंग स्कीम्स जो उनसी हैं ये लाहौर का मसला नहीं है, ये अक्रॉस द कंट्री हर शहर का तकरीबन मसला है, और उसमें जितना भी उसका सराउंडिंग एग्रीकल्चर एरिया था वो सारा का सारा जो उनसे है वो इन्होंने कवर कर लिया हाउसिंग स्कीम्स ने, पेरी अर्बन सब अर्ब जितना भी है वो सारे का सारा जो उनसे है इनके पास चला गया। अब ये इशू जो उनसे है ये भी इस वजह से पैदा हो रहा है कि वो बाईलाज के मुताबिक उनका जो पिकुलर रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए थी। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो आप यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस बेटर देन नो बेटर देन मी दैट हर जो मेयर है वो अपनी एक टीम लेके आता है और वो टीम जो उनसी है उसके साथ काम करती है और वो अपना उसका एजेंडा या जो कुछ भी उसकी विजन होता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश
करती है। ठीक है जी मौजूम साहब आप जरा आगे चलें। ये जो
आपकी मैं एक कमेंट जी देखिए वी आर बीइंग क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ठीक है ना जी, बट आप ये देखिए कि लोकल गवर्नमेंट्स तो ऑन अगेन ऑफ अगेन किस्म का सिस्टम है जी। They normally have only existed when there has been a non-political dispensation at the top. जब तो political government था वो तो उनके साथ कोई exist नहीं कर रही। तो what do you expect then from the local government? तो इसी तरह होगा जिस तरह है civil servants continue to run the local governments also. आज भी पंजाब के अंदर there is no local government and the elections have been deferred for at least another 9 months. So we're not going to have local governments for another year now. And when you don't have continuity, there are no systems are going to be developed. No, so what can we expect? Coming to this, one small observation is, देखिए ये जो कह रहे हैं जी कि शायद my understanding is that there are different laws for different cities and the urban organizations, the development authorities and the municipal authorities keep on coming up on that. And for Lahore, for example, I know that LDA has come up with this. Blue area and mauve area and green area where there are different restrictions. Now, Gulberg, which used to be, as all of us know, a purely residential society, is now a commercial area. And there are no limit on high-rise buildings. However, the question that also I think which we must make is, why is not there as much of development in that area as was expected? So the buildings have been built. They are three quarters empty. Where's the demand? Why is the demand not coming up? Because this entire Gulberg area, you know, high rise, different, you know, there are different limitations. You can go up to 40 feet. You can also go up to 200 feet. But still, there's very little activity. I think that it's also a question of what is the demand in the economy also.
बिल्कुल ठीक जी तारिक साहब, आई फुली एग्री विद यू। आई थिंक तारिक बाजवा साहब, बट द प्रॉब्लम इज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज देयर इज नो लोकल गवर्नमेंट, इट इज द फेडरल गवर्नमेंट दैट रन्स लोकल गवर्नमेंट। द डीसी रन्स अ लोकल गवर्नमेंट, द सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रन्स अ लोकल गवर्नमेंट, एंड क्वाइट फ्रेंकली दैट इज वेयर द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन कम्स इन। एंड गुलबर्ग, वेयर आई डोंट वांट टू गो इनटू इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट आई जस्ट वांट टू आस्क इलहान, इलहान यू वांट टू से एनीथिंग हियर, और शुड आई गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज आल्सो।
या एक्चुअली आई हैव बीन लिसनिंग व्हाट एवरीवन हैज बीन सेइंग। Just a couple of points regarding some of the things that were raised. The first is that when we look at, let's say, our closest neighboring example, as was mentioned as well, India,
What we see is that, I mean, their development experience is also not really something to write home about. If we look at India's development trajectory during the first, let's say, 40 years period of Nehruvian socialism, what you see is generally low levels of economic growth, high levels of poverty, and inability to achieve industrial takeoff of any measure. You also see the emergence of a huge subsidy economy built around central government giving provinces and local government subsidies for all sorts of different things. The Indian Planning Commission, for example, estimates that something like 80 to 90% of the agricultural subsidies and 70% of India's development spending is simply stolen or wasted or otherwise misappropriated along the line. Then, of course, after 1990, the Indians did open up their economy. And that opening up did produce a kind of economic growth. And I think the Indian Administrative Service has falsely tried to take credit for what happened after 1990. However, the result of that rapid growth is also very interesting. And Thomas Piketty has actually written about this in his study on India's billionaire Raj, that when India became independent, the top 1% of the population accounted for about 1/4 of the national wealth. And under the policies pursued by Nehru and his successors, that percentage of the top 1% declined to about 7 to 6% of the national wealth by the mid-1980s. When the Indian economy started to open up again, what happens is that between 1987 and 2002, the share of the top 1% in the national wealth basically returns to the levels that existed during the British Raj. And after 2002, the government of India stops publishing those statistics, so it becomes much harder to get your hand on this income inequality data. And today, what we basically see is that in India, the top 1% accounts for a ridiculous 60, 70% of the country's wealth. So it is even worse than what existed in terms of, you know, colonial era inequality. And this is all, you know, under the whole neoliberal free market, deregulate, et cetera, sort of framework. So that's one thing. The other thing is that when we talk about different sectors in the Pakistani economy, let's talk about housing. There's a wonderful study of this by Professor Hiroshima, who was associated with JICA. He's been associated with Pakistan and its studies since 1961. He's got a wonderful PhD dissertation called The Structure of Disparity in Developing Agriculture, which is based on the Punjab. And he's done a lot of other work as well. And what he's basically found is, based upon data going back to 1891, is that in the Indian subcontinent, land, not built up property, but land, is seen as a very important source of saving. So the public demand is for plots. It is for physical control of land, not necessarily for built up property in the form of flats or other things. And that he's basically mapped out over the preceding 120 years or so of data that he's gotten. So in that sense, people in our part of the world generally do prefer, if they can, to get a piece of land that they can then either sell or save or then dispose of at a later date or build something on at a later stage. So that is also one issue regarding this. Then when we come to the whole issue of regulation, I find this debate about Pakistan very interesting when we say our economy is overregulated. I would humbly submit that our economy is not overregulated. I would humbly submit that our economy has a lot of written procedures, but practically all of these written procedures can easily be broken by anyone with a modest amount of social capital and with a modest amount of money if they're willing to spread it around. So Pakistan is in many ways a almost a sort of, you know, narco-libertarian paradise when it comes to it, the way that its economy functions. You see this with reference to tax collection. You see this with reference to how your sectors like your per capita consumption and everything is all booming while the overall formal economy is in a permanent sort of crisis. So I would basically say that yes, if the law, the procedures, etc., are there, but the laws of Pakistan are like a spider's web. They ensnare only the weak. They are easily broken by the strong or even the somewhat powerful. That they can basically do whatever they feel like. And that is really a question of, you know, a sort of Wild West Pakistan. You don't have to go very far. Just visit the Qaid-e-Azam University and you can see Wild West Pakistan in Port Hathial. It's visible from the National Center for Physics. So I would again basically submit that when we say that we are overregulated, what we're basically saying is that yes, we have a lot of laws and procedures, and yes, those laws and procedures can be irksome to some people, but really it does not stop the accumulation of huge fortunes. It does not stop the emergence of massive concentrations of wealth and capital, et cetera, and land and property. So it's, you know, it's a bit of a, I would say, a self-argument.
We'll do a separate thing on regulation. Don't worry, we'll call you for that too. The issue of regulation is a very important one. We find, economists find, that you get this feeling of the narco-liberal economy only when the regulations are strong and therefore people have to bypass them, but they forget that. The issue is, look at these grades, the BPS grades. Folks, doctors can't go beyond grade 20, 21. Most, in fact, retire in grade 20. Engineers retire in grade 20, they can't go to grade 21. Agricultural specialists retire in grade 18, 19. All the specialists retire early. Professors finally have got grade 21. Grade 22 is only reserved for the best. In the US, there is no professor who is poorer or ranked less than any civil servant. So I think this artificial socialism that we've got, you need to tell me about this. How long can this artificial socialism go on? I don't think any local government goes beyond grade 20. I think local government is stuck at grade 20 and below. This hierarchy says a lot about how we live because economic determines a lot. Secondly, look at the reward structure. Basic pay, allowances, monetary, cash, in-kind, intangibles, such a complicated structure. Plots, housing, all kinds of things, foreign postings. This is the ground for corruption. This is where the narco-liberal society begins, because you have so many strange ways payment. Should these end or not? I ask you very plainly, should these things be history now? These things should be something that Ilhan should study as a past, not the future. Look at the wage bill. Wage bill, civil service is very fond of doing this, that hey, we have to have our total wage bill is very low, but we don't want to put in our in-kind costs. The real estate that civil service housing controls in Lahore is half of Lahore. It is a very expensive proposition. The real estate, the civil service, housing control in most cities is huge. So we have to put that in as a cost. Should this colonial Raj end or not? Okay, ji. Ab dusri cheez ye hai ki they are all, pehle cheez to chalna yehi karna. Ye mujhe batayin, compensation ka jo nizam hai. What do you guys think of it? Very short, very brief. It can't be long, please. Should we go on to a simple system where pay means pay? I was at the fund for 30 years. I had one paycheck. Nothing else. Should the civil service be put on one paycheck and nothing else? Or should it be all kinds of things? These things. Any takers? But very quick, we don't want long.
Ji, let me take the bite the bullet, as they say. Of course, see, all economic studies that I've seen, you know, in a different context, in the context subsidies, the best subsidy is a cash subsidy. So similarly, also the best emoluments are the cash emolument. Can the government give that cash emolument? If they yes, absolutely. You ask any civil servant whether he'd want his perks to be monetized and given a market-based salary, or would he be willing to work for, you know, a mix of some salary and some perks. I think the choice is obvious. But look at the comparison. When I was at the State Bank, I looked at the numbers. The entry level service, the entry level salary of a State Bank officer was 87,000 rupees. The entry level salary of a civil servant is 25,000 rupees. So that's the sort of difference. And I'm not even talking about the private sector. So if you, yes, and let me just throw another number at you. And that number is that in the Punjab government, when I was there as the finance secretary, we had roughly about 8.5 lakh employees. If you increase the salary of an employee by 1 rupee, that meant 1 crore rupees a year. And what you're talking about is not 1 rupee. It means at least 30, 40,000 or 50,000 on an average for each employee. You need 50,000 crores for just to start. Of course, you know, and then of course you've not talked about the pension. The pension is in another area. It's a huge contingent liability that is staring the federal and the provincial governments in the face. It is unfunded. And there a time will come that its share in the provincial and the federal government's budgets are going to become larger and larger. That's also one thing that it has to be, we have to move towards the contributory pension system. We have the resources to do that. I think that the key issue is, and one of the fundamental issues that we have is, that for a longish period of time, we have not been able to enlarge the size of the pie. And because we have not been able to do that, and actually in the last 3 or 4 years, that size, the pie, if you adjust it for inflation, has been contracting. So if you have that environment, I don't think you can expect a major change. And just one more point. I had to leave at 1, but I have now to leave at 1:30. I have two or three other things waiting for me. So if it's all right, I'll leave at 1:30.
No problem. Chaliye ji, we'll try and hustle it quickly. Dekhiye ji, baat aapki bilkul sahi hai, but it's time we began to think about these things and cost them and begin to work on them. And I think that is the job of the civil service. If the civil service can't engage in reform and think, ye jo bar bar hum baat karte, reform nahi hota, it's so difficult, costing nahi ho sakti, commission...
Sir, main idhar comment karna chahunga ek.
Zarur kariye, bataiye.
Acha,
ye... Kyun nahi ho sakta, kyun nahi aap ye kaam kar sakte? Nahi to hum kar dete, hame bhi nahi karne dena.
अच्छा ये अभी आपने ना एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें 22वें ग्रेड के बारे में बताया गया था. अच्छा ये 22वें ग्रेड को ना पाकिस्तान में समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप 17 स्केल में इंडक्शन करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में कि सारे बंदे टॉप टीयर पे जाए. अब अगर हमने पाकिस्तान की सिविल सर्विस में 22वां ग्रेड समझना है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम डीएमजी की बात करें, डीएमजी की ने जो सूबों में सीट्स ईयर मार की हुई हैं अपने लिए वो 1956 है. अगर फेडरेशन की, गिलगित बल्तिस्तान की और बाकी सारी सीट्स मिलाएं तो ये 3400 बनती हैं. 3400 सीट्स हैं, ये केडर पोस्ट है. इसके अलावा जो नॉन केडर पोस्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा आप इसमें कह सकते हैं, 1000 के करीब वो हैं. 4000 से 4500 तक पोस्ट ऐसी हैं जहां पे डीएमजी ऑफिसर्स जाके पोस्टिंग कर सकते हैं. अच्छा, अगर आप इनकी अभी तादाद देखें ना तो ये डीएमजी ऑफिसर्स 800 के करीब हैं. इट मींस के एक डीएमजी के ऑफिसर के लिए आपने 5 सीटें ईयर मार की हैं. अगर ये फार्मूला रखेंगे तो फिर आप 22वें ग्रेड में जाएंगे. अगर आप ये फार्मूला नहीं रखेंगे तो फिर आप 22वें ग्रेड में नहीं जा सकते. अगर जितने डीएमजी ऑफिसर्स हैं उनके लिए उतनी ही सीट्स कर दी जाए तो ये 19, 20, 21 में जाएंगे जैसे बाकी सर्विसेज के लोग जाते हैं. अच्छा, दूसरी बात की आपने पर्क्स की. पर्क्स एक कॉलोनियल कल्चर जो है सिविल सर्विस का, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को वो सिविल सर्विस को ज्वाइन करें. खास तौर पे जो गांव के लोग हैं, जो दही बैकग्राउंड के हैं, सिविल सर्विस को वो ज्वाइन करना चाहते हैं, खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को और आपकी पुलिस सर्विस को, क्योंकि वो उनको अट्रैक्शन देती है. ना पर्क्स की वजह से नहीं देती, लेकिन वो उनकी एक सोशल कैपिटलाइजेशन का बायस बनती है. ये दो चीजें हैं. अगर आप कॉलोनियल कल्चर सिविल सर्विस का खत्म कर दें तो बेहतर एचआर सिविल सर्विस में आएगा. वो पर्क्स बेहतर करने से, मुआवजा बेहतर करने से, बेहतर सहूलियात देने से. अब जो कॉलोनियल कल्चर है, ये एकर्स के मकानों में रहते हैं, 20-20, 30-30 मुलाजम जो है वो हम देखते हैं कि सेक्रेटरीज यूज करते हैं, 6-6, 10-10 गाड़ियां यूज करते हैं, उनकी फैमिलीज यूज करती हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है. ये सिस्टम बहुत मुश्किल होता है इस सिस्टम के अंदर रहते हुए और ईमानदार सिविल सर्वेंट्स के लिए जो बहुत थोड़ी सैलरी के ऊपर गुजारा करना चाहते हैं.
नहीं कि इसका कॉस्ट नहीं हम लगाते। अच्छा जी ये बता दीजिए ये चीजें बाजवा साहब ये सामने आ गया पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रेनिंग पे, ये तो आई थिंक बहुत अगेन इलान विल इल्यूमिनेट अस बट आई थिंक ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं खत्म हो सकती आजकल जमाने
में। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पहले तो इस वक्त तक जो है जो यू नो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है इवन द प्रोविंशियल सिविल सर्विस कमीशन जो है probably one of the most fairest organizations or the fairest examination that are being conducted by them and largely on merit induction ho rahi hai. acha dusri baat aa gayi aapki ke ji ye jo hai aapki examinations ki jo aap baat kar rahe hain, you know when I was in grade 19 and I had to go for my at that time the NEPA training program, the National Institute of Public Administration, they started an induction exam or a clearance exam. Now, after this two exams were held, the other services started crying horse that this is a conspiracy of the then DMG that they only they can qualify this exam. Now, so it's a complicated thing. And why again, I'm coming back to my earlier point, because of our varied experience, because of our exposure, because of, you know, you get to know things a little better than other services who have their own narrow focus. So that was one area that, and then they had to undo that system because other services people could not qualify that. But regardless of that, unless you have, to my mind, I think what the future that we have to go in, and this is something that we as the then DMG Association had made a presentation to the NCGR also at the time, is that we must come up with a system which at two levels at least, at the mid-level and at the senior level, must ensure that the dead wood is now taken out of the system. And what we had suggested was that at that time, 20% of the lowest of any given cohort must be dropped. If at 1 year you are looking at 50 civil servants, 10 of them who are the poorest or the weakest link in the chain must be dropped. That will spur the other into performing better. At the moment, you know, you join the civil service and you continue it in it till you're 60 years old. You may not get promoted into grade 22 or 21. You may retire at 20, but that's how you can continue with it. So yes, there is room to ensure that at some level, whether it's through an examination, whether it's through some other objective, merit-oriented process, we must ensure that we are able to take out the dead wood from the system. But we must also be cautious. Any system, anything that you do, we have a very intrusive judicial system also. And it will be extremely difficult to throw out anyone from it. Look at the PR system that we have. It's very flawed. But even if you have the courage to give someone an adverse ACR, he goes to the court and gets them expunged. Even if you deny someone a promotion, they go to the court and the entire, you know, the group of that then is challenged and everybody is put on a hold. So these are the realities that we have to live with. So
What about your training? Your training? 2.5 years, 3 years?
Ji, dekhiye, main toh, absolutely. Ji. I am all for it. And that's why, remember, I also made a point of the training need assessment. When there was the last training need assessment made, what sort of a federal secretary does the federal government want? What skills, what academic base, what attitude does the provincial government ask for in a provincial secretary? Where is that? So I absolutely agree that there must be a great deal of emphasis on the training. I am also of the view that you don't have to do, you know, one size fit all sort of a training. You go to the National School of Public Policy at 19 or even 18 for MCMC, I think there should be a core syllabus. And then based on your evaluation, for example, if I'm from the civil service, even from grade 18, I am used to making summaries. So if somebody I go to their training institution and they start teaching me how to make a summary, is absolute waste of time for me. Similarly, for somebody like, say, from the audited account service, if you're talking to him about the accounting system or management accounts, see, that's what he does. So it's a waste of time for him. So while I agree that, you know, to my mind, there must be a core syllabus, and then there must be, based on your assessed needs, there must be training facilities. And those could be outside these training institutions also. The Institute of Cost and Management Accountancy can do that. LAMS can do that in Lahore. There are umpteen other institutions that can do that. On the economic side, PITE can do that maybe. So that's the sort of thing that we need to now evolve into. You can't expect everything to be taught to everyone. That's not how it should be done. Yes, that should be a core course for maybe 4 weeks or 6 weeks, but then based on their evaluation and assessment, this is your weak area. What is a mid-core career training all about? A mid-career, to my mind, it is trying to cover your weaknesses and reinforce your strengths. And also, of course, looking at it from the prospective position that you are going to hold, what is going to be the requirement. Again, I'm not being critical, but for example, you know, you're in a senior position, even as in a field position, you're negotiating all the time. There is no training on negotiations. You know, you negotiate with in a field environment with the tajiran, with the farmers, anyone and everyone. In the federal secretariat, you're negotiating IMA program, you're negotiating with the WHO and other things. You are not training your people for that. Similarly, for management accountancy, I think that's another Achilles heel in a system. That's what we need. Our secretaries cannot be good regulators unless we understand accountancy. And that's another weak area that we have. And this is not the whole list. There are other areas also that need to be covered. So there is as much training as is required, plus more should be provided to the civil servants, both at the induction stage and during the service stage.
You know, if anybody else wants to say, Janjua, sir.
I'll take my leave, Dr. Saab, now. Thank you for having me over. Thank you.
Janjua, sir, thank you.
Thank you, sir.
Mary, I have a different story to tell. You know, unfortunately, you will be surprised to know that there is no such type of your terminology in local government service of what we are talking about training. A sanitary inspector, jo aapka shahar ka jo sanitary inspector hai, agar aap usse mile aur usse puche ki usne kabhi koi training li hai, to wo kahega ji training kis block ka naam hai. So this is very unfortunate, even on civil side, you know, on the federal services, even on the PMS side, they have a system of training, but in case of local government, there is no training. Now they have realized it, and now they have introduced, they are gradually introducing induction training, and then we have started only induction training so far. Whereas the other, mid-career or on-job training, the non-existent. Bilkul iski, aur ye to officers ki baat hai, jo servants hai local governments ke, unki kabhi kisi kisam ki koi training nahi. Punjab ki main aapko misal deta hun, ki there is only one academy, Lala Musa mein maujood hai, aur you will be surprised to know ke uska agar aap budget puchhein, to uska training ke liye budget hi koi nahi. Us academy ka. Though they have the hierarchy wahan pe assistant director maujood hai, but baki ki jo surat-e-haal hai wo agar aap ye kahe ke ji jis purpose ke liye wo academy banayegi, there is no budget for that purpose. So this is the situation, you know, what is happening in local governments. And on the other side, सबसे ज्यादा जो अभी एसडीजी के हवाले से मैं बात करूंगा कि वो तो एजेंडा 2030 मेनली डिपेंड ही ऑन लोकल गवर्नमेंट्स करता है. एंड इवन इफ यू आस्क एनी वन पर्सन फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, तो वो आप के मुंह की तरफ देखना शुरू कर देगा जी कि एसडीजी आप किस चीज का नाम ले रहे हैं.
मलिक साहब बताइए, यू वांट टू से एनीथिंग?
ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. सिविल सर्विस के ऊपर जितनी भी बात होती है वो सिविल सर्वेंट्स के बारे में बात होती है. मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो आपका सपोर्ट स्टाफ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये देखते हैं कि हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग नहीं होती। अव्वल तो वो काम सिविल सर्वेंट को ही करना चाहिए, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वालिटेटिव ट्रेनिंग जरूरी है। और अब जो हम एक चीज देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज 1/3 ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर है वो अब ई कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। स्पेशली जो आपकी आईसीटी स्किल्स हैं वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आईसीटी स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी लॉ नोइंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कोडेड सिस्टम ऑफ लॉ है, आपको रूल्स रेगुलेशन और लॉ की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और तीसरा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है वो डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, जितने भी टीयर्स और हैं टीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं है। आप इसकी ट्रेनिंग करवाएं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें सिविल सर्वेंट्स का, सब लोगों का, कि वो डिसीजंस लें और वो उनके डिसीजंस प्रोटेक्ट होंगे सिस्टम के अंदर। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये ट्रेनिंग्स के साथ मैं उसको लिंक करता हूँ कि पाकिस्तान का जो सिस्टम ऑफ लॉ है उसमें रेगुलरिटी और क्रिमिनलिटी का फर्क नहीं रहा। आप काम करते हुए कुछ आपसे रेगुलरिटीज हो जाएं, और इंसान से हमेशा होती है जब वो काम करता है तो वो हमारे सिस्टम में उसको क्रिमिनलिटी बना के सामने किया जाता है, जिसकी वजह से लोग काम करना छोड़ दें। ट्रेनिंग बहुत अच्छी इम्पार्ट होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग की होनी चाहिए, और लॉ की अंडरस्टैंडिंग की होनी चाहिए, और आईसीटी स्किल्स की, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ठीक है जी, ओके जी। अब ये मुझे बात बताइए छोटी सी कि ये आप कहाँ, कोई आपके यहाँ रिसर्च प्रॉब्लम थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई ऐसी चीज होती है, कौन करता है ये?
नहीं, जो जो पब्लिक सेक्टर की मैं बात करूं डॉक्टर साहब, तो ऐसे है कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन देख लें या आप एसएनजीएडीज देख लें प्रोविंसेस के, जो कि ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको काम करना चाहिए। हम अक्सर जब आपस में बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि ये मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है ये, बल्कि 16th-17th century के जो मुंशी खाने नहीं होते थे, ये ऑर्गेनाइजेशंस उन पैटर्न के ऊपर काम कर रही हैं कि अभी भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 से 1,500 सिविल सर्वेंट्स हैं या 5,000 से 6,000 उसका सपोर्ट स्टाफ है, तो उसकी कोई करियर प्लानिंग नहीं, कोई करियर ग्रोथ नहीं, और पोस्ट के ऊपर कौन सा आदमी जाना चाहिए इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ। हम ये देखते हैं कि बाहर आप पब्लिक पॉलिसी में फिल करके आए हैं, डॉक्टरेट करके आए हैं, तो इधर आपको डिप्टी कमिश्नर लगा देंगे, आपको कहीं और भेज देंगे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी।
सवाल मैं और पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि भाई लाहौर का फॉर एग्जाम्पल ले लें, लाहौर में जो इतना मेस मचा हुआ है कि लाहौर की ट्रैफिक की हालात इतने बुरे हैं, कौन ट्रैफिक काउंट कर रहा है, कौन हमें बता रहा है ट्रैफिक की क्या हालत है, लाहौर में सैनिटेशन की हालत है, कौन रिपोर्ट दे रहा है? मैंने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी किसी से, या एजुकेशन के बारे में, या सैनिटेशन के बारे में, या हेल्थ के बारे में। कहाँ है आप लोगों की रिपोर्टें? आप लोग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? आप लोग क्यों नहीं हमें डेटा देते? अगर मैं आपसे आज आके डेटा मांगू, मुझे लाहौर का ट्रैफिक का डेटा दें, लाहौर का मुझे सैनिटेशन का डेटा दें, लाहौर की मुझे आबादी का डेटा दें, आप लोग देंगे कि नहीं देंगे?
अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अगर आप मुख्तलिफ ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होंगे, अब कोई ऐसा सेंट्रल ऑफिस नहीं है, कोई सेंट्रल ऑफिस नहीं है जो आपको ये डाटा दे सके। बुनियादी तौर पे ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। अगर एक स्ट्रॉन्ग फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट होती तो लोकल गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस एक इदारा कर रहा होता। अब क्योंकि इसमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं।
तारिक साहब, प्रॉमिस ले, प्रोविंशियल एजुकेशन रिपोर्ट कोई आप लोग बनाते हैं? को प्रोविंशियल इकोनॉमी की रिपोर्ट बनाते हैं? प्रोविंशियल इकोनॉमी की रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, प्रोविंशियल एजुकेशन की रिपोर्ट नहीं देखी, प्रोविंशियल हेल्थ की। देखिए, हर कोई दूसरे की तरफ उंगली को उठाता है। अपने काम पे मुझे बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मिलता है? मैं रिपोर्टें देखता ही नहीं, कोई हर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाता हूं, मैं रिपोर्ट ही नहीं देखता। तो सिविल सर्विस का काम
जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, वो ना रिसर्च का काम होता है, ना ही बाद में जो पोस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड कोई रिपोर्ट्स आती है, कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आती हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होती, ना एक्शन होते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में, अनफॉर्चुनेटली।
इलान, यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस? चलें जी।
Yes, I do actually. A couple of things. Ek to going back to the slightly earlier discussion regarding public service commissions,
there's no harm in having public services commissions if they are properly empowered. One of the things that we have done in Pakistan after independence is that we've actually stripped our public service commissions of most of their powers as they had existed under the Government of India Act. So they are now just exam-taking bodies, and everything that they do is regulated by law, and their members practically serve at the pleasure of the government. So they've lost a lot of their autonomy and other things which they should have had. Regarding research and regarding other things, there ought to be, of course, in fact, I remember going back to the 1980s, there are actually different departments, you know, publishing research reports about their own efforts, their own functioning. Back in 1987, there was a big study edited by Jamilur Rahman on overall administration in Pakistan. But you really don't see that continuing into the 1990s and the early 2000s. Instead, what you see is that most of the research-related functions are outsourced to donors. They're the ones that are supposed to be writing the reports and coming up with solutions, et cetera, you know, consultants, so on and so forth. And they produce the, let's say, the research or whatever you want to call it about the public administration of Pakistan. The bureaucracy seems to have fallen out of the habit of thinking or researching or writing about itself or its functions from the 1990s onwards.
Achha, quickly, time bahut zyada ho raha hai, main aapse pooch lu. Ye humne jo baatein ki hain, jo main dekh raha hu, that it's a huge mess. Kisi ko kuch nahi pata. I think we don't have an administrative system. We have a, Ilhan, you said it right. We have a Punjab club system. कि जी पंजाब क्लब में बैठ के ये लोग सब गपशप लगाएं, याशी करें और अपने रूल्स बना लें. परमिशन इकोनॉमी है, परमिशन इकोनॉमी, जिसने उठना है उसको उसको जूते मारो कि उल्लू के पट्टे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आ, तो पहले बता तू इंसान है कि नहीं इंसान है, तेरी हैसियत क्या है, तू फिर क्या करेगा वगैरह. ओवर रेगुलेटेड इलान, आई डिसएग्री विद यू, वी विल हैव अ डिबेट ऑन दिस. इट्स ओवर रेगुलेशन दैट प्रोड्यूसेस द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट हैपेंड. वी हैव गॉट अ ह्यूजली रेगुलेटरी प्रॉब्लम एंड दीस गाइस डोंट वांट टू डू एनी वर्क, दे जस्ट वांट टू चुदराहट. आई वांट टू बी वेरी ब्लंट अबाउट इट. ठीक है, और सिविल सर्विस रिफॉर्म का कोई सीरियस काम नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं. मुझे प्लीज आप लोग बताएं क्या हम कर सकते हैं, कोई सीरियस बात करें कि ये कैसे हम खत्म कर सकते हैं. इतना मुश्किल काम तो नहीं है, मेरा तो ख्याल है बड़ा सिंपल काम है. डिसेंट्रलाइज, प्रोफेशनलाइज, ऑटोनोमस, तीन चीजें बस. मैं इसके ऊपर 30 साल से लिख रहा हूँ, ये तीन चीजें करने खत्म हो जाती बात, क्यों नहीं हम कर सकते, बताइए क्विकली.
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मेरी जो इनपुट है या जो हमने इसके ऊपर थोड़ी सी सर्च की है, तीन पॉइंट्स के ऊपर अगर सिविल सर्विस चली जाए तो ये डिलीवर कर सकती है, बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है. पूरी दुनिया में सिविल सर्विस डिलीवर कर रही है. पहले तो आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना है, आपने इसको आइन के मुताबिक बनाना है. जो दूसरी चीज है, आपने जनरल कैडर जो है ना, जनरल कैडर को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है. ऐसे नहीं हो सकता कि एक सिविल सर्विस से आप ताल्लुक रखते हो, वो तहसील में भी आप जाएं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट भी करें, फिर आप प्रोविंशियल सेक्रेटरी बने, फिर आप फेडरल सेक्रेटरी बने, और आपका ऐसा जनरल कैडर है जो नीचे से ऊपर भी जा रहा है और फिर हॉरिजेंटली भी उसको रोकने वाला कोई नहीं है. ये जनरल कैडर को आपने स्पेशलाइज कैडर में लेके आना है. जब तक ये स्पेशलाइज कैडर में नहीं आएगा, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती. और जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हम समझते हैं कि जब तक जो आपकी प्रमोशन है वो कंपेटिटिव होनी चाहिए. अगर आप कंपेटिटिव प्रमोशन का जो लेडर है उसको क्रॉस नहीं करते, आपको सिस्टम से निकाल देना चाहिए. जब तक आप सिविल सर्वेंट्स को या उनके स्पोर्ट स्टाफ को सिस्टम से नहीं निकालेंगे परफॉर्मेंस के लिए, तो आपकी सिविल सर्विस बेहतर नहीं हो सकती. और अच्छा, हमेशा जो ऑडिट करेगा, चाहे आपका परफॉर्मेंस ऑडिट है चाहे कोई भी ऑडिट है, वो थर्ड पर्सन करना चाहिए. पाकिस्तान में एक ये है कि अदलिया जो है वो कहती है कि मैं अपना हिसाब खुद करूंगी, बाकी दारे कहते हैं मैं अपना एहतसाब खुद करूंगी, ब्यूरोक्रेसी भी कहती है कि मैं अपना एहतसाब खुद करूंगी. जो आपका परफॉर्मेंस ऑडिट है वो थर्ड पर्सन करेगा, और जो सिस्टम है परफॉर्म नहीं करता उसको सिस्टम से निकाला जाए. ये अगर तीन चीजें हो जाएं तो हमारी जो सिविल सर्विस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है.
चलिए जिंजू साहब, आप बताइए दो तीन चीजें बस क्विकली.
मैं एज फॉर एज आई थिंक दो तीन चीजें जो हमसे हैं, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम करने में कामयाब हो जाए, पहली तो बात यह है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, बल्कि डिवॉल्व किया जाए टू द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और हर लोकल गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनसे है और अपने किटी के मुताबिक जो उसके रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक इम्प्लाई करे, ऑफिसर्स को इम्प्लाई करे, सर्वेंट्स को इम्प्लाई करे और उसके मुताबिक उसको चलाए. नंबर वन. नंबर टू, बाई लॉज वाली जो प्रोविजन है उसको ये मैक्सिमम यूज किया जाए कि वो अपने जो एरिया है उसके मुताबिक उसकी रेगुलेशन फ्रेम करें और उस ताकि वो इम्प्लीमेंटेबल हो सके. तीसरी बात यह है कि ट्रेनिंग जो उनकी है दैट इज नेसेसरी, जो कि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है. एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल देर इज नो ट्रेनिंग, देर इज नो रिसर्च एक्सेप्ट what the ayan said that it is you know we have left to the donors whoever comes and he conduct the you know technical assessment and prepare the report. Otherwise wo silsila jo unsa hai wo is kisam ka nahi ho sakta.
Theek hai ji. Ilhan, quick 3 points to speak.
Yeah, a couple of things. Number one, a lot depends upon what you want the civil service to deliver. If you want the civil service to deliver development, then basically you already have a blueprint in the form of the 1962 Pay and Services Commission. You can basically dust it off and update it as necessary and start to implement it. The problem, of course, is that the political will for that type of a civil service is simply not there. It isn't really there amongst the civil servants, it isn't really there amongst the military, and it's not there amongst the political leadership. So I would basically say that we can point to various reforms that can be done, but there simply isn't enough of a critical mass in terms of political support for real reform in this country.
Thank you, folks. Dineji, open to the audience. Let me just say, I don't care about political support. I don't care about political will. I think, Ilhan, it is the job of academics to frame questions and answers. And that's
well, we can, of course, frame questions and we can answer them as well. There's plenty of literature available. But if people who are in authority are not interested in the literature that is being produced, then there's not much that academics can do to compel them to follow their prescriptions or their advice. They don't have any coercive or patronage power at their disposal.
I've heard start my thought. Quite frankly, academics have failed. They've produced nothing that we can hang our hat on. Today we have failed. We've heard nothing that makes any sense. This area is a total mess, and I think somebody should take some thinking power to it and deliberate on a reform. Please, participants, boliye jo bhi bolna
chahta bolna. Nadeem sir, would you allow me to say a few words, please?
Go ahead, please introduce yourself and speak, please.
I will introduce myself briefly. I joined civil services in mid-1970s and I then left for England. And I took resign because of obviously not very content with what was happening in the country at that time. And I realized that the whole structure of, I'm in England right now and I work for British Rail and I'm in a high position. And I realized that our civil services lacked the basic structural lapses. We had disconnect with the public, disconnect with the government. The rules were framed by the British and they were still followed. There were far too many tiers. We were not in local government or federal government. I'm lucky to have served both for quite a long time. And I realized that our services together need to be really changed. I mean, rehauled, restructured, re-ruled. The basic issue here we are facing is that there is no training, there is structure. It's like we as a nation are divided in many spheres. Like I don't want to go into it. We have got religious differences, we have got sectarian differences. Exactly similarly, we have got differences in the civil services. For sake, in local government, if you start right from the bottom to the top, I mean, you don't have a voice. If you are a lower cadre, grade 17 or 16, you don't have a voice. And you have the most public dealings. You can mend laws, you can do anything, but you can't actually express yourself. Corruption is because there is too much of control by the superiors, this interference by political authorities. And we have to really restructure before we go ahead. So my basically is that the whole civil services, either the local government or the federal, really need to be rehauled altogether.
Thank you. Anybody else, Ji?
Can I?
Please, go ahead. Ji, go ahead, PT.
Nadeem, पहले तो मेरा कमेंट ये है कि यू कुड सी द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द थ्री लेवल्स ऑफ सर्विसेज दैट आई थिंक इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर ट्रेनिंग एंड द सिलेक्शन प्रोसेस एंड वी नीड टू सॉर्ट ऑफ क्लोजली लुक एट इट सेकेंडली आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनली अभी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज सर्विसेज शुड बी एट द लेवल ऑफ देयर गवर्नेंस सेंटर में सिर्फ एक फॉरेन सेक्रेटरी चाहिए फाइनेंस सेक्रेटरी चाहिए चार पांच चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ये सब एक गलत काम हो रहा है देयर शुड बी प्रोविंशियल सर्विसेज फेडरल सर्विसेज एंड लोकल सर्विसेज और फाइनली मुझे सिर्फ एक छोटी सी कहानी याद आ रही है ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का मसला अयूब खान के जमाने में शुरू हुआ तो एक मैन पावर कमीशन बना मैन पावर कमीशन बना तो उसके नतीजे में बना एक मैन पावर डिविजन उसमें एक सेक्रेटरी लग गया फिर उसमें एक एडिशनल सेक्रेटरी लग गया फिर उसमें एक डिप्टी सेक्रेटरी लग गया और फिर उन्होंने कहा किसी ने काम भी करना है तो एक पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट बना ये है हमारी स्टोरी थैंक यू
वेरी वेल पुट वेरी वेल पुट जी और कोई
ये स्पेशल सेक्रेटरी मेंशन करना भूल गए हैं देयर इज अनदर पोस्ट ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी एज वेल
जॉइंट सेक्रेटरी
कहते हैं
नदीम कहना है फ्रॉम निसार मीमा
जी निसार सर जी
सॉरी माय वीडियो इज नॉट हियर माय आई मस्ट से थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस यू आर ऑलवेज वेरी कैंडिड अबाउट द डिफिकल्टीज दैट वी हैव इन ऑन अ सब्जेक्ट एंड आल्सो आई वांट टू थैंक द पैनलिस्ट हु आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम माय क्वेश्चन टू यू इज Why has no anybody not included? Perhaps Ilan could have included the last civil services reform, that administrative reform that Dr. Ishrat Hussain has carried. I would like to hear what has he done and what is the view, a very candid view of the panelist on this, because I don't know that subject at all.
Good point. We'll come to the panel on that. Okay. बताइए कोई और सवाल है तो.
जी नदीम मेरा एक सवाल है प्लीज आलिया
बोलिए
जी जी सवाल तो नहीं है लेकिन एक रिफ्लेक्शन है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी से डेप्यूटेशन पे अपनी चॉइस पे एक साल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मैन पावर एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज में काम किया था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं जो लेबर इकोनॉमिक्स क्लासरूम में पढ़ाती हूँ उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्रियल लेवल पे तो मैंने उस तजर्बे से ये सीखा कि जो आप रिसर्च की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो एक साल गुजारा बेसिकली वो कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए जो वहाँ पर रिसर्च रिक्वायर्ड थी एक प्रोफेशनल लेवल की मैं खुद भी करती रही और जो दो रिसर्च ऑफिसर्स जो कि आई एम सॉरी टू से इकोनॉमिस्ट एंड प्लानिंग ग्रुप की तरफ से मिले हुए थे उनको कुछ ट्रेन करने की कोशिश की और असल में मसला ये है कि जो इकोनॉमिस्ट एंड प्लानिंग ग्रुप है उसका पूल अब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें पोस्ट्स मौजूद हैं रिसर्च ऑफिसर्स की लेकिन उन पोस्ट्स पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई हुई और डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबव को जिस किस्म की वर्किंग है ब्यूरोक्रेटिक उसमें रिसर्च के लिए अगर किसी का जहन उस तरफ जाना भी चाहे तो वो स्पेस नहीं मिल सकती तो अगर एक स्टडी की जाए कि रिसर्च ऑफिसर्स जो हैं इकोनॉमिस्ट एंड प्लानिंग ग्रुप से वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं तो उससे बहुत कुछ पता लग जाएगा कुछ जगह पे जैसे प्लानिंग कमीशन ने यंग डेवलपमेंट फेलोज के स्कीम में कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स करने की कोशिश की तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर एकेडेमिया इनरोड्स बनाने में नाकाम रही है तो और ये जो आप बार बार कहते हैं कि वो सवाल क्यों नहीं पूछते तो वो सवाल जब तक उस माहौल में रह के उस माहौल की वर्किंग के अंदर वो सांस नहीं लेंगे, वो सवाल उनके जहन में यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट में आने बहुत मुश्किल है. थैंक यू.
वेरी गुड, वेरी गुड.
I'm Dr. Jawad Agha. I've recently, just to introduce myself again, I've recently retired as a member customs from the FBR after putting in 33 years in the civil service. Basically, we've been talking about many issues from the past, the perspectives. To look into it futuristically, if we say that, one, we have received the Dr. Ishrat Hussain report, which in detail delves into a multi-tiered recruitment system with four or five major occupational groups at the federal level. However, I believe that if the PIDE or research coordinates with other research institutions, because all do have their individual research institution, to do a study into how much of the time we do a need analysis vis-a-vis our service delivery, number one. Secondarily, there are probably hardly any quality assurance reviews, except for wherein the donor agencies come in to support in the civil service reform, and they do quality assurance with the clientele regarding their levels of satisfaction. Thirdly, what is our level of skill development? Mr. Tariq Bajwa also spoke about training need assessment, etc. So possibly we would require that, looking into the future, we focus more on sustainable systems be in place. The ESTA code, as speakers were mentioning, the different civil service reforms and the civil servants laws and rules, is a more or less document which is lying there since ages. I believe that a study needs to be conducted so that we review, it needs a focused review, the ESTA code in totality, and then at all levels, be they federal, provincial, or the local government levels, vis-a-vis quality assurance for service delivery and putting systems in place. The world is now converting, especially in this post-pandemic era, which will creep in, will be more into an automated environment. So how far is our readiness for that? Thank you.
Okay. क्यों जी, एनीबॉडी एल्स?
सर अस्सलाम वालेकुम. मैं कुछ कह सकता हूं? कमर जमान यार सर.
बोलिए बोलिए.
सर मैं दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहां पे. बेसिकली आपने रेगुलेशंस या ओवर रेगुलेशंस की बात की, एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स. अगर इस पे इनको देखा जा सके, वन इज बेसिकली पंजाब लैंड यूज रूल्स 2009 के. सर इस रूल्स, इस पंजाब लैंड यूज रूल्स के तहत पूरे पंजाब में सम बेसिक इंडस्ट्रीज लग सकती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप की. अच्छा सर, इसके साथ एक और एक्ट है जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज पंजाब इंडस्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1963 का. 1963 का एक्ट भी मोर लेस इसी किस्म की पावर देता है. जब इन दोनों को आप कंबाइन करके देखते हैं सर, तो हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो कि सियालकोट, गुजरांवाला और इस रीजन में लगी हुई, वो सारी की सारी इलीगल हो जाती है, बिकॉज एनी इंडस्ट्रियल सेटअप आउट ऑफ द इंडस्ट्रियल जोन. अब इंडस्ट्रियल जोन पंजाब में ऐसे चार पांच ही है, बाकी इसके अलावा जितनी इंडस्ट्रीज स्टैंड अलोन इंडस्ट्रीज सियालकोट की सारी इलीगल हो जाती है. अब सर वो बात अभी थोड़ी देर पहले न्याज साहब ने भी ये की कि इन चीजों को आप बेसिकली सर्कमवेंट कर सकते हैं पाकिस्तानी स्ट्रक्चर में, और पॉइंट इज दिस कि आपने ऑलरेडी इतना ज्यादा फ्रंट लोडेड कर दिया है चीजों को, एंड बेसिकली इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन. वंस आई से फॉर अ कॉमन मैन, देन इट बिकम्स कि वो तो नहीं लगा सकता, फिर उससे रेंट सीकिंग आएगी, समवन हैविंग पॉलिटिकल कनेक्शन. उन्होंने सोशल कैपिटल का वर्ड यूज किया. सोशल कैपिटल कोट एंड कोट एक बड़ी डाइसी सी टर्म हो जाती है मेरे नजदीक पाकिस्तान में. तो ये उसी किस्म का एक ही स्ट्रक्चर है जिसको आगे लेके चलने. अच्छा, कल कल आगे जब कोई इसको नैब या एफआईए या उन हवाले से देखते हैं, तो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज ही सॉर्ट ऑफ इलीगल सॉर्ट ऑफ वो आ जाती है. इस वजह से अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में एफडीआई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में कोई एफडीआई नहीं है. पाकिस्तान में जितनी भी एफडीआई आई, वो सारी की सारी कंज्यूमर मार्केट या एक बड़ी लार्जर मार्केट को टैप करने के लिए आई है. तो बेसिकली I strongly agree with your statement ki ye jo rent seeking yes permission economy ka word hai na, probably mere nazdeek shayad ye Pakistan ki economy ko sabse zyada affect kar raha hai ye cheez. Thank you sir.
Ji Nazim sir, I am Shamim Ahmed Khan. May I say something if there is time? Hello.
बोलिए बोलिए रजा साहब
जी जी आई एम सॉरी सॉरी समबडी एल्स
जी बोलिए बोलिए
जी नदीम आई डोंट people have made some very pertinent points which we need to study very carefully. I think this question that was raised of civil service at for every level of government, I think that is an important consideration. Federal mein to it's relatively, it would be easier, except that there is also the question that in the constitution there's a federal legislative list, part one and part two, and what happens to, how do you govern part two? But that's one area. But in the province, it's slightly more complicated because the province works both at the level of the secretariat and the directorates, as well as the level of the districts. So there is the district administration, which is very much, it's not part of the local government system as we have it now. Then we have a disempowered local government, and we have heard a lot about how this functions. So I think we need at the local government level, which I've studied municipal governments for now nearly 30 years, so, and looked at municipalities, over 150 municipalities in Sindh and Punjab in particular. But what happens at the municipal level and at the local government level is that there is this local government's local council service, which, as was mentioned, created after 1964, which is a provincial level thing. It has technical cadre as well as a managerial cadre. And then there is this thing at servants of local councils, which are direct employees, and they are basically at the lowest level. I think we need to go back to the pre-64, that local at the local level, at the municipalities employ their own, they have their own employees answerable to the at the local level rather than at the provincial level. The province always already has oversight through the local government commission and other mechanisms that exist. At the moment, of course, even the budget of the municipality is approved by the needs approval by the government, by the provincial government. So we have completely disempowered local government in Sindh as well as in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. In Punjab, it doesn't exist at the moment. So there is this local council thing, which is very important, and which problems that you mentioned are all at the city level, the municipal level. However, the municipal government has been split into, with the creation of these parallel bodies, corporate bodies, and this also has to be taken into consideration. There is no single government for any of the cities of Pakistan, particularly let's talk of Punjab and Lahore. There are the development authorities, then there are the companies, then which are like for solid waste, etc. Then health is not a local government thing, although public health partially is local government, but medical care and primary health care is provincial government. So you have these sort of disconnects, and it cannot work like that. If public health, if it is not a local concern, it cannot be administered. And I think you have already talked about this. So there is no municipal arrangement at all. So when you say, where are the cranes? I would say, where is the municipal government that I can go and ask, where are the tar cranes? I don't even have a body. I can take this question too. This is very, very disconcerting situation here.
जी, जमीन साहब आप कुछ कह रहे थे?
जी जी मैं I'm sorry I'll be very brief. Just to introduce myself, I am Shamim Ahmed Khan and I joined civil service in early 60s. But most of my more than half of my career has been outside what could be called mainstream jobs in the civil service. I did a bit of a stint in different normal jobs, but then I have been in a regulatory role for more than 10 years. I worked in corporate law authority. And then I was controller of capital issues. And then ultimately my last assignment, of course, was, as you know, that the government sent me to structure corporate law authority into SECP, and I set it up and was the first chairman. So this is, I think, my introduction. Secondly, I think just very briefly, I think, first of all, let me congratulate you on Pied and yourself for organizing these very interesting and stimulating discussions on this course on different subjects. This is the second time I'm attending. It's very, very useful, very rewarding. Now, I think that first of all, I would like to say that both Ilhan and Tariq has, both Bajwa, they have raised some very important issues, and I will not go into that. The need for training, need for professional competence to undertake the jobs that we are assigned. But I think I just like to make one correction. I just like to amplify what Tariq Bajwa said. He said that we are that the Indian civil service, what is called the IAS, is functioning quite effectively. So I have had a lot of interaction with my counterparts in India in the 80s and 90s, and I do notice and I do endorse that statement. But I think that two important changes in policies and two important elements of their policy which have helped the civil service. One, that all the civil servants, when they join the civil service IAS, they are assigned to a particular state, which is not their home state. So that is a very important thing, because they can function more objectively in a state other than their home state. Secondly, I think in professional assignments, the tenure is minimum of 5 years. And I think this is, in my view, these two things have helped them to develop some professional competence in certain assignments. Like, I mean, you are aware that that you need very, very specialized knowledge of trade issues, for instance, anybody to serve in in commerce. And similarly, in many other fields, like even in health management, I think this is a very professional assigned job now. So I think we can introduce these two things. I mean, without tinkering with much of the system that we have, unless we can undertake a fundamental restructuring of the civil service. I think even within the present structure, we can improve and we can develop professionalism through training and through these transfer and posting policy which the government has. And I think Tariq had mentioned the role, very critical role of the establishment division, where the postings are too frequent. People are not allowed. Actually, there is no premium on specialization. I, for instance, I worked in an institution for 10 years, and this helped me to develop understanding of issues. And I did not find any problem of working along with the professionals. In fact, we have to work jointly. So I think this is just these two points I just want to make, that even without a massive restructuring, which may not be possible or feasible, we can introduce policies to achieve the objectives that we have in ensuring more effective delivery from the civil service. Thank you.
Thank you. Thank you. Chaliye ji, if nobody else, then we'll go to the panel. Bataiye, Tariq Malik sahab, kuch, do you have anything to respond?
जी अच्छा अभी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर बात हुई और डॉक्टर इशित हुसैन साहब के बारे में भी बात हुई सर आप भी उस जो टास्क फोर्स थे उसके मेंबर हैं और आप बाद में रिजाइन करके डॉक्टर साहब से हमारी ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर बात होती रही है हमारी उनके साथ मार्च और अप्रैल में भी डिस्कशन हुई थी तो हमने उनसे यही दो तीन क्वेश्चन पूछे कि आप सिविल सर्विस रिफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये तो बताएं कि ये रिफॉर्म्स है क्या तो हमें रिफॉर्म्स के बारे में बताएं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है इसकी स्ट्रक्चरल आप इसको कैसे बेहतर करने के लिए जा रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जो चीजें हमारे साथ डिस्कस हुई वो कुछ कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट का उन्होंने जिक्र किया कि जो डीएमजी कितनी पोस्ट ईयर मार्क हुई है तो हमने नंबर ऑफ दो पोस्ट वो वहां से कम कर दी है तो सीरियस इश्यूज जो रिफॉर्म्स के हैं तो वो अभी अपनी जगह पे खड़े हैं, जब तक वो सीरियस इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए जाएंगे ना रिफॉर्म्स होंगी और ना गुड गवर्नेंस और फंक्शनैलिटी हो सकती है, वही जो मेन क्वेश्चंस। अच्छा ये अभी IAS जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी भी बात हुई, जो उनका रिलेशन है अपने स्टेट सर्विसेज के बाद। अच्छा सिविल सर्विसेज रिस्पॉन्ड करती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया इज अ यूनियन टेरिटरी, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और 18th अमेंडमेंट के बाद तो बिल्कुल पोजीशन ही चेंज हो गई है कि एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के दो पार्ट्स आ गए हैं। पार्ट वन फेडरल सब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है, पार्ट टू जो है उसका वो CCI के सब्जेक्ट्स हैं और बाकी रेजिडरी है जो 240B के तहत सूबों के पास है सर्विस के बाद। ये बुनियादी नुक्ता है जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि सब्जेक्ट और उसकी एग्जीक्यूशन की कोरिलेशन होना बहुत जरूरी है, कि जो सब्जेक्ट जिस लेजिस्लेचर में फॉल करता है उसको एग्जीक्यूट करने वाली जो बॉडी है वो भी उसी लेजिस्लेचर या उसी पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चल नहीं सकता। मैं उसकी एग्जांपल ये अक्सर देता हूँ कि एक सब्जेक्ट सूबे का है, उसको सूबे की असेंबली ने लेजिस्लेट करना है, सूबे की गवर्नमेंट जो है वो उसकी पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसने उसके ऊपर पॉलिसी बनानी है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, और जो उसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है वो फेडरेशन की है, वो सर्विस फेडरेशन की है। तो वो जो फेडरेशन की सर्विस है वो सूबे को और सूबे की असेंबली को जब जवाब ही नहीं दे सकती, जब वो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आती नहीं है तो वो सिस्टम काम कैसे कर सकता है। हमने बहुत सारी एग्जांपल सूबों में ऐसी देखी हैं कि जो फेडरल DMGs के डेप्टी सेक्रेटरीज हैं, डेप्टी कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर्स हैं, उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया या उनसे ब्लंडर्स हुए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट उन्हें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उनके ऊपर प्रोविंशियल लॉ नहीं हो सकता है। वो करप्शन करें वो सूबा उन्हें पकड़ नहीं सकता, वो इंतजामी तौर पे काम करें वो करें या ना करें उनकी डिस्क्रेशन है, अगर कोई अच्छा सिविल सर्वेंट है उसकी विल है काम करेगा, अगर नहीं है वो नहीं करेगा। तो जब तक सिस्टम ही अपनी सिविल सर्विस को अकाउंटेबल नहीं करेगा तो वो काम कैसे चल सकता है। ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं जो हम प्रैक्टिकल फील्ड में जब काम करते हैं तो हम उन चीजों को देखते हैं कि सिस्टम के अकाउंटेबिलिटी मोड सिविल सर्विस के ऊपर बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल स्पेंडिंग के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के हों, चाहे जो भी हों। इनके बगैर सिविल सर्विस रिफॉर्म नहीं हो सकती अकाउंटेबिलिटी के कल्चर के बगैर। और एक और पॉइंट हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सर्विस, ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को देखती है, बल्कि वो प्रोविंसेस की नुमाइंदा होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो लोकल सर्विस है या लोकल सर्विसेज के सब्जेक्ट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हमारे एक पार्टिसिपेंट ने पहले डिफाइन किए हैं, वो इंटायरली डिफरेंट है। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सूबों की नुमाइंदा है, उन्हें लोकल सर्विसेज या लोकल सब्जेक्ट्स के अंदर किसी सूरत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जी
जी जंजुआ साहब आप बताइए।
अच्छा सर दो तीन चीजें हैं, एक तो निसार मेमन साहब का जो था क्वेश्चन वो उसके बारे में इन्होंने तारिक मलिक साहब ने भी बताया, लेकिन एज फार एज द लोकल गवर्नमेंट्स आर कंसर्न्ड उसमें जो पहली रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस चला था 2008 में जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी उसमें उन्होंने इस चीज को इंडोर्स किया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को, और उन्होंने कहा था कि इसको फेजेस में आप इंप्लीमेंट करें। फर्दर उन्होंने कहा कि जी प्रोविंशियल लोकल काउंसिल सर्विस जो उनकी है इसको एबॉलिश कर दिया जाए और उनको एडजस्ट किया जाए डिस्ट्रिक्ट सर्विस, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट हैपेंड। And again, you know, I mentioned earlier about that interview which he has given to the news, and usme bhi unhone isi kisam ka koi zikr kiya hai, lekin on ground jo unse hai the reality is entirely different, kyunki is kisam ka koi concept jo unse hai provincial legislation support hi nahi kar rahi, ke jo jiska ye doctor sahab zikr kar rahe hain, हर जो जो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि चारों सूबों में उनका लाज उनसे है वो प्रोविंशियल लोकल काउंसिल सर्विस को ही इसी को कंटिन्यू करना चाहता और इसी को इसी की फेवर में है, और ये सिलसिला जो उनसे 1964 से चला आ रहा है जो कि अभी तक नहीं खत्म हुआ। तो एक तो ये था उसके बारे में अपडेट, और दूसरा इन्होंने जो जिक्र किया लैंड यूज रूल्स का, मैं इनसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि जिस वक्त 2001 में लोकल गवर्नमेंट्स से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हुई थी, तो उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रोविजन थी लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस 2001 में, दैट वाज रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स एज वेल। अब इसमें जो चीज है ये सिर्फ इन्होंने तो एक लॉ कोट किया, देर आर मैनी अदर लॉज जिसमें के प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जो उनसा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी तरफ उसका मेजर फंक्शन या स्लॉटरिंग वाला जो है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि उसमें स्लॉटर एक्ट भी है जो कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के अंडर है वो, और सिमिलरली जो ये मेजर फंक्शन है स्लॉटरिंग का दैट इज विद द लोकल गवर्नमेंट, है लोकल गवर्नमेंट के अपने रेगुलेशन है, और उसमें सम टाइम दे आर इन कंफ्लिक्ट विद इवन जो उनसा है उसमें जो फाइंस और पनिशमेंट की प्रोविजन थी वो इनको बाद में इन्होंने रिकनसाइल किया इन केस ऑफ पंजाब, के उन्होंने कहा कि जी एक वक्त में दो जो लॉज हैं उसमें ये प्रोविजन है पेनल्टी की, जो लिहाजा लेस होगी वो इम्पोज होगी और मैक्सिमम नहीं हो सकेगी, लिहाजा इसको एक को अबालिश करें और एक को, लिहाजा वो इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अमेंडमेंट की गई और उसको अबालिश किया गया उस पेनल्टी को जो कि इलीगल स्लॉटरिंग पे यहाँ पे मौजूद थी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में, ताकि वो प्रिवेल करे प्रोविंशियल लॉ। सो द सिमिलर द अदर प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट सिंगल लोकल गवर्नमेंट इज नॉट अवेलेबल, द पार्टिसिपेंट वाज क्वाइट क्लियर देयर इज ओवरलैपिंग। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द लाहौर, there is a municipal corporation, metropolitan corporation, there is a Lahore Development Authority, there are the park authority, park and horticulture authority, there are parking company. So these are the issues, and the partly, you know, the DHA is also there and the cantonment is also there. So there are so many agencies which are, you know, working on the in the same area, and there is a quite there is a overlapping and in the functions, and ultimately hota ye hai ke jo apna citizen hai he get confused ke ji usne LDA ke paas jana hai. Ab LDA ki badi interesting baat hai ki uske metropolitan corporation ki jurisdiction mein there are certain controlled area, वहां पे हाउसिंग और उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल और बाकी की चीजें जो उनसे हैं दैट इज विद दी एलडीए। अब हुआ यह है कि जिस वक्त ये 2001 का लॉ आया तो 2001 के लॉ में जिस वक्त इन्होंने इसको ओवरराइड किया और टाउन्स वगैरह बने, तो दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन डेवलपमेंट इन द कंट्रोल्ड एरिया, और दैट वॉज पॉइंटेड आउट बाई द एलडीए के जी आप हमारी ज्यूरिसडिक्शन में जो उनसे इंटरफेयर कर रहे हैं। So this actually the word you which you use in the title is aptly correct. That is there is a mess in fact. Agar dekha jaye.
Ilan sahab, any last words?
Yes, I do have a few observations. The first is can you hear me? Yes, I hope so.
Good.
All right. The first thing is. This is with reference to the point about India. There was actually a very good study of India's bureaucracy in the 1980s, which specifically examined the level of political interference in the postings and transfers of administrative service officers. And what that study basically revealed was that on average, let's say if an Indian administrative service officer had a career of, let's say 30 years, they would be posted between 25 and 35 times during the course of that career. In some provinces, it was higher, in the center, it was a little bit less, but you know, about 56% of Indian administrative service officers would end up being posted out within a year of their postings. Fewer than 10% would actually complete a regular posting of about 3 years in any particular post. In Pakistan also, you have a pretty arbitrary transfer raj in place. where civil servants are transferred around very, very frequently at different levels of government. The current government is no different from the previous ones. And this is something which unfortunately makes it very difficult to evaluate performance. It makes it very difficult to, you know, have any sort of reasoned decision-making, and it, you know, creates all sorts of other issues as well. So that's the overall pattern in India in that sense. Then when it comes to the issue of our permission economy, I think if you look at the overall structure of any capitalist or semi-capitalist society, you have over the last 40 years an extraordinary level of regulatory capture by the people who need to be regulated. So whether we are looking at the United States or the United Kingdom, whether we're looking at the European Union, or whether indeed we're looking at peripheral economies like ours or India, what we basically see is that any attempt to open the market, any attempt to deregulate, does produce wealth for a few people, but it exacerbates the underlying inequality. And this seems to be holding true across practically any society, whether it's industrialized or semi-industrial or developing or whatever. So we need to be able to, you know, put our, let's say, regard or disregard for whether Pakistan is a permission economy or not, because we are a permission economy in the sense that the Pakistani state is like, you know, that security guard outside the kacheri, ke jo usse pooch leta hai to usko bitha deta hai, aur jo nahi poochta hai, jo tagda banda hai, wo basically does whatever he feels like. And this is true not only of Pakistan, but it is true of the United States, it is true of the United Kingdom, and it is true, generally speaking, of the way capitalism has evolved over the last 40 years. So we need to be careful about idealizing market-like solutions. We may end up with an even worse problem than what we have today. Reference the efforts by Dr. Ishrat Hussain. If I remember correctly, he was also there in 2006-07 under the Musharraf regime, National Commission for Government Reforms. He was there under the PMLN government as well, and he is there under the current government as well. So Ishrat Saab has been occupying the crease for at least 15 years when it comes to being the reform czar of Pakistan. And I hope that he manages to get some runs on the board at this stage. My fear, of course, is that whenever a new government comes in, it has a relatively short window in which it can actually push any serious reforms through. Political capital depreciates very rapidly. And what we see is that with the current government, when they came in, they did not seem to have any kind of blueprint ready. And the result was that whatever little momentum they might have had at the beginning of their government was lost. So now if a new report comes out, it will be very useful for historians like me. You know, we can go and we can examine it and we can dissect, you know, what was going on with the bureaucracy. But there seems to be too much of a political vested interest and administrative vested interest for any reform effort to actually succeed at the current stage. Thank you.
Athar sahab, aap koi last cheez kehna cha rahe hain? Abhi aap end mein raise kar rahe hain, about to close the meeting. If you have some quick comment to kar dein, warna we can't go forward. You bataiye.
Can everybody hear me?
Ji, bataiye.
My name is Azhar Zahur Rahman. I'm a governance consultant with about 41 years of experience in about 20 countries. My point is that we need a massive transformation. Now, the transformation starts at the process level. Most of our processes were designed probably 100 years ago, 50 years ago, or 70 years ago. So the whole thing should start at redesigning the processes. Now, the processes at every level, they will give you the skills that are required. Now, some of those skills will be automated. Some of them will not be automated. The ones that are automated will give the inventory of skills that are required in the bureaucrats. Based on those skills, we should train the bureaucrats and create the positions. This is how I've been doing transformation in large organizations around the world. and probably this should also work in the government of Pakistan. This was, these were my two cents. Thank you
very much. Ali Kamal, you wanted to say some last thing? Ali Kamal.
Ji, mic off tha. Jo pehle do teen points hain, maine ek hi ab reh gaya hai. Basically, sorry, with due apology from everyone. बहुत ज्यादा स्नबिश एटीट्यूड होता है सर. अगर किसी ने बात की थी कि जी वो टीयर्स पे अगर हम देखे जाएं तो जो 17 ग्रेड वाला है उसके साथ क्या रवैया होता है और 18 के साथ क्या होता है, 19 के साथ क्या होता है. इतना स्नबिश एटीट्यूड है, अगर आप काम करना चाहेंगे तो टांग खींचने वाले काफी होते हैं. क्या इसका कोई सदबाब हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि देयर इज एनी लॉ? बिकॉज वी डोंट नो एनी एस्टा कोड रूल्स. तो हमारे वो रूल्स के अंदर से टांगे खींचने के लिए काफी होती हैं. Which we call bureaucracy or yeah, regulations, yeah, usko jo bhi naam dete. Thank you.
Thank you very much, folks. I think you've seen what a big mess we've got. And quite frankly, I don't know where to begin. It's a very, very sad. It just shows how pathetic a people we are. We can't think through anything. But one thing I would say, please don't look to India. It's only us who looks up to India. The rest of the world doesn't look up to India. Even the Indians don't look up to India. Monte Carlo Valley, Surjit Bhalla, who is now the executive director in the IMF, always tell me, and in fact, I would put Surjit Bhalla on the line just now if I could. Unfortunately, it's late in Washington. He always tells me, please don't follow India. We are a mess. But we Pakistanis have a fascination with India. Oh, India mein ho raha hai, hum bhi kare. India mein ho raha hai, hum bhi kare. Oh, bhai, India's gone nowhere. India's like us. Got huge amounts of poverty, huge amounts of problems. India's going nowhere too. They're ending up with the same mess as us. Oh, bhai, dunya ko dekho, aage chalo. A mess apne liye create kiya, law after law. Civil service ka kaam hota hai, ke wo policy banaye, wo research kare, wo hume bataye ki hamari economy mein kya hai. Hamari civil service sirf afsarshahi karti hai. कोठियां बांटती है, कोठियां बनाती है. अभी जीआर में तीन और कोठियां, चार और कोठियां बन रही है. ठीक है, अभी मेरे पास एक बात करते हुए एक मेरे पास मैसेज आया एक अफसर का कि फलानी अटैच डिपार्टमेंट या अटैच डिपार्टमेंट ऑटोनोमस एजेंसी है, उसमें फलाने बंदे की गाड़ी का
we lost
अजीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही.
थैंक यू मच. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.
थैंक यू जी. थैंक यू,
थैंक्स अ लॉट. वेरी नाइस.